आज की कथा में आप सभी श्रोतागण का स्वागत। वेद श्री कृष्ण की जीवनी को, उनके कृष्ण चरित्र को नित्य लीला कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है, जीव योनियां कितनी है? 84 लाख, 8.4 मिलियन, 84 लाख। जलजा नवलक्षाणी, पानी में रहने वाले 9 लाख है। आजकल के साइंटिस्ट 2 लाख तक गए हैं, अभी उनको और थोड़ा ढूंढना है। तो यही बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये वेदों में कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही रिसर्च हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिसने बनाया है उसी ने वेद दिए हैं। जैसे जिस कंपनी ने आपका मोबाइल फोन बनाया है, उसी कंपनी ने मोबाइल फोन के साथ एक छोटी पुस्तिका भी दी है, इसको ऐसे इस्तेमाल करो, ये बटन दबाओ ऐसे, यहां मत कुछ करो, ये गारंटी वॉइड हो जाएगी अगर आपने ये रिबन ये स्टिकर निकाल दिया। तो इसको कहते हैं एक निर्मित वस्तु और उसकी पुस्तिका, एक प्रोडक्ट और उसका यूजर्स मैन्युअल। तो जो भगवान ने जितना है वो गीता में कहते हैं, अहम बीज प्रदापिता। तो जिन्होंने जन्म दिया है 84 लाख योनियों को, वही सबसे अच्छा अपना मत प्रदान कर सकते हैं कि टोटल जीव जो पानी में रहते हैं वो 9 लाख है। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर जो एक जगह पर रुके हुए हैं, स्थिर हैं, हिल डुल नहीं सकते, जैसे कि वृक्ष वनस्पति। वृक्ष वनस्पति है 20 लाख। जलजा नवलक्षाणी, पानी में रहने वाले 9 लाख, स्थावर 20 लाख, पक्षीणाम 10 लक्षाणी, 10 लाख पक्षी, क्रमयो रुद्र संख्याया, 11 रुद्र हैं इसलिए 11 लाख प्रकार के कीटक। तो 9 लाख पानी में रहने वाले, 20 लाख वृक्ष, 11 लाख कीटक और 10 लाख पक्षी और 30 लाख पशु। कितनी हो गई टोटल? 80 हो गए। 4 लाख प्रकार के मनुष्य। आप समझते हैं कि हम मनुष्य तो एक ही हैं, तो 4 लाख प्रकार का मतलब क्या है? ये 84 लाख योनियां मतलब 84 लाख प्रकार के जीव नहीं है, अंदर आत्मा एक ही है। कितनी आश्चर्य की बात है, बड़ी व्हेल मछली है, बड़ा कोई अफ्रीकन हाथी है, इतना बड़ा शरीर, 2-3 टन वजन का, और अंदर आत्मा जीवात्मा एक ही। कोई कहेगा कि लेकिन किसी जीव में बाकी बहुत सारे जीवाणु होते हैं, हमारे अपने शरीर में कुछ पेट खराब हो गया तो डॉक्टर कहते हैं कि कीड़े हो गए हैं, तो वो जीवी तो मेरे शरीर में रह रहे हैं ना। लेकिन जैसे आपके घर में इतनी चींटियां कॉकरोच निकलेंगी, लेकिन घर का भाड़ा कौन देता है? आप, क्योंकि ये फ्लैट आपके नाम पे है। आपका नाम लिखा है ऊपर, सोसाइटी में आपका नाम दर्ज किया है, कुछ हो गया तो आपको पकड़ा जाएगा कि आपने ये क्यों किया। भले उसके अंदर बाकी जीव रह रहे होंगे टेम्पररीली। तो उसी प्रकार से हाथी जैसा बड़ा शरीर है, लेकिन जिस जीव को हाथी की योनिया योनि प्रदान की है वही उस शरीर का टेम्पररी टेनेंट। और एक कृमि, छोटा सा कीट, एक मक्खी तो बड़ी हो गई। मैं यहां पर लिखने का काम करता हूं, कभी कभी रात को अगर लेट हो गया तो मैं देखता हूं कि मेरा पेन, क्या मेरा निब, उससे अगर मैंने एक फुल स्टॉप किया खाली, उस फुल स्टॉप से भी छोटा सा कीटक है। और अगर मैंने उसको पेन से ऐसे रोकने की कोशिश की, एक दिन मैं देख रहा था कि ये कहां जा रहा है, तो मैंने उसको पेन लगा दिया, तो एकदम वो ऐसे मरने का नाटक कर रहा है। उसे लगा, मैं जानता नहीं कि ये नाटक कर रहा है, ये मैं जान चुका हूं। तो फिर मैंने ऐसे फूंक मारी तो वो पकड़ के बैठ गया कागज को। उसको लगा कोई साइक्लोन आया होगा या कोई। फिर मैंने नीचे से कागज को, तो फिर चलने लगा। उस जीव में भी एक आत्मा, ये तो कम से कम मैं आंख से देख सकता हूं, और मेरी आंख की रोशनी उतनी तेज नहीं है, तो ये कैसा संसार है। ये छोटे से कीट से लेके ब्रह्मा तक, सब जीव सब भगवान के अंश। क्यों उन्हें ये सब ऐसे विविध शरीर लेने की आवश्यकता क्या है? कल हमने एक श्लोक की चर्चा की थी, कर्मणा दैव नेत्रेण। अलग अलग प्रकार के कर्म किए हैं और दैव उस प्रकार का शरीर प्रदान करता है। जैसे कोई व्यक्ति जाके कहेगा होटल में, मैं पत्नी और तीन बच्चे, हमको रूम चाहिए, तो कहेंगे एक फैमिली का रूम है। कोई अकेला आदमी आएगा, बोला मुझे छोटा रूम चाहिए। कोई दूसरा आदमी आएगा, बोला मैं अकेला हूं लेकिन मुझे बड़ा रूम चाहिए। तो होटल में क्या है, 10-15 प्रकार के रूम्स हैं। उसी प्रकार माया शक्ति ने ये 84 लाख प्रकार के होटल जैसे रूम बना के रखे हैं, और अगले दिन अगर हम कहेंगे मैनेजर से, अरे इधर तो बहुत गर्म हो रहा है, एसी लगा दो, बोले ये रूम में एसी नहीं लगता, दूसरा एसी वाला रूम है। आप कहेंगे इसी 200 रुपए पर दिन में एसी लगा दो ना, बोला ऐसे नहीं होता, 800 रुपए वाला रूम मिलेगा एसी का। तो एक जीव योनि में आने के बाद हम अगर कहेंगे मुझे उड़ना है, तो फिर मनुष्य योनि में क्या कर रहे हो, पक्षी बन जाओ। मुझे पानी में रहना है, मुझे पर्वत पर रहना है, मुझे जंगल में रहना है, मुझे समुद्र के नीचे रहना है। अब जो इच्छा बोलोगे, इच्छा पूर्ण करने के लिए जीव योनियां है। हम सोचते हैं मुक्त पंछी, वाह कितने आराम से उड़ रहे हैं आकाश में। वो मुक्त नहीं है, वो भूख के मारे तड़प रहे हैं उधर। उस योनि में जाओगे पता चलेगा कितना कष्ट होता है उसमें। पक्षियों को देखा है आपने, पक्षी योनि में, वैसे सारे जीव योनि में बताया गया है, पक्षी योनि का एक सबसे सबसे बड़ी भावना, सबसे जिस भावना का सबसे अधिक प्रादुर्भाव होता है वो है, कोई जानता है, भय। इतना भय होता है, कुछ दाने पड़े हैं, एक कौवा, एक कबूतर, चिड़िया, और आप वहां गए तो उन्हें लगेगा कि ये दाने लेने के लिए आ गया है या मुझे पकड़ने के लिए आ गया है। तो इस गलत फहमी मत रहना कि बाकी जीव बड़े सुखी हैं और हम ही केवल दुखी हैं। नहीं भय सब जगह पे एकदम छाया रहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो ये सारे शरीर अलग अलग प्रकार की इच्छाओं का रिजल्ट है, परिणाम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जीव की दशा देखो, कभी गुलाम होके काम कर रहा है, कभी राजा होके राजा राज सिंहासन भोग रहा है। और निश्चित ऐसे होता है कि बिना ज्ञान के राज सिंहासन पर बैठकर अन्याय करता है, किसी को गलत ढंग से दंडित करता है, फिर अधम योनि प्राप्त करता है। प्रभु रामचंद्र के दरबार में कोई भी व्यक्ति एक घंटा बजाने से रामचंद्र का दर्शन पा सकता था। तो एक दिन एक कुत्ता उस रस्सी को खींच रहा है, तो भगवान ने कहा कि बुला दो। बोले नहीं, वो तो कुत्ता है, पता नहीं क्या कर रहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, नियम यह है कि जो भी घंटी बजाएगा मतलब उसको कोई समस्या है, तो हम देखना चाहिए क्या समस्या है। तो राजा ने पूछा क्या आपको समस्या है। बोले मैं यहां रस्ते पे पड़ा था, नींद लगी थी, और यहां पे एक बड़ा मठ है, मठ के पुरोहित वो सुबह सुबह पूजा के लिए जा रहे थे, तो मैं देखा नहीं उनको, मैं उनके रास्ते में था, तो शायद मेरी वजह से उनको कुछ कष्ट हुआ होगा कि बीच में मैं कुत्ता ऐसे सोया था। अरे उन्होंने इतना बड़ा पत्थर मारा मुझे, देखो मेरी पीठ लगभग टूट गई है। तो प्रभु ने देखा कि ये सच है, ये बड़ा पूजा काम करता है, पुरोहित कहलाता है, लेकिन एक प्राणी के प्रति इतनी हिंसा, अवश्य दंड करेंगे उसको हम। बोलो क्या दंड दें उसको। बोलो उसको इससे भी बड़े एक मंदिर का गुरु बना दीजिए उसको। अभी तो केवल पूजा पाठ करता है, लेकिन बहुत सारे शिष्य, बहुत सारा धन, बहुत सारा मान सम्मान ये सब दे दो। उन्होंने कहा आप वरदान की बात कर रहे हैं, हम दंड पूछ रहे हैं, अरे कुछ दंड बोलो। बोले प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं पिछले जन्म में ऐसा एक गुरु था, मुझे इतना अभिमान था कि मैंने भी ऐसे अनेक पशुओं को लात मारी, पत्थर मारे, तो ये कुत्ते का जन्म मिला है मुझे। तो भगवान समझ में आया कि ये वरदान नहीं है, ये एक्चुअली दंड ही मांग रहे हैं उनके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की ये बात सत्य है कि आज जो राजा है वो कल रंक है, आज कोई बेवकूफ है, कल सबसे बड़ा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, ये सब कर्मणा दैव नित्रेण। मैं इसलिए ये विषय आरंभ में ले रहा हूं कि जीव और भगवान में क्या अंतर है, कि जीव माया द्वारा ऐसे शरीर, जीव को ऐसे शरीर लेना बाध्य है, कंपल्सरी। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जीवन मेरा हो गया है, अगला जीवन मुझे एक राजा का दो, मुझे किसी विद्वान शास्त्रज्ञ का दो, मुझे स्पोर्ट्स स्टार बनना है, मुझे ये बनना है, कोई नहीं मांग सकता ऐसे। आपने जो भी कुछ किया है उसका लेखा जोखा लिया जाएगा। और कर्मणा दैव नेत्रेण, एक बार शरीर निकल गया फिर आपके नौकर चाकर, आपका सारा मान सम्मान ये सब यमदूतों के हाथ में है, कोई उनको नहीं बोल सकता कि मुझे मत छूना, मैं राजा हूं, मुझे मत छूना। प्रभुपाद बताते हैं कि आणविक शक्ति, एटॉमिक एनर्जी, आज इसका बोलबाला कम है क्योंकि अलग अलग जगह पे विस्फोट हुए हैं, रेडिएशन बढ़ रहा है, कैंसर हो रहे हैं। एक एटॉमिक एनर्जी प्लांट या रिएक्टर में अगर एक्सप्लोजन हो गया तो कहते हैं कि कम से कम 2000 से 20,000 स्किन के कैंसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर वो रेडिएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन 1960-70 में बहुत चर्चा हो रही थी कि ये इतनी सस्ती बिजली मिलेगी, इतना सस्ता सब कुछ होगा। इंडिया का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक समिति बनाई गई थी और मेघनाथ साहा करके बड़े विद्वान, वो प्रोफेसर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, उनको एक दिन बुलावा आ गया, जल्दी आ जाओ, अर्जेंट मीटिंग है। तो वो घर से अपने परिवार के सदस्यों से कहे गए कि हमको अर्जेंट जाना है, गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी में बैठ गए उधर हार्ट अटैक आ गया, उधर ही मृत्यु हो गई उनकी। दुखद घटना है, लेकिन प्रभुपाद इसके पीछे इसका आध्यात्मिक तथ्य बताते हैं कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये उनको एक अति महत्वपूर्ण काम के लिए बुला रहे हैं। और वहां पे यमराज बुला रहे हैं, नहीं यहां पे आ जाओ। तो कोई यमराज या यमदूतों से कह सकता है कि थोड़ा और टाइम दो भाई, और 3 दिन दो, बहुत काम बड़ा है, ये रिपोर्ट साइन करना है मुझे, नहीं तो ये पूरे कंट्री का क्या हाल हो जाएगा। अरे राष्ट्र क्या, समिति क्या, आपका टेक्नोलॉजी क्या, वो कहेंगे टाइम अप। एक व्यक्ति थे जो प्रभुपाद से कह रहे थे कि मैंने इतना सारा सेविंग्स लगाकर एक बंगला बनाया है, फिर मैंने एक कंपनी चालू की है, तो मैं अब मर नहीं सकता, मुझे और 3 साल लगेंगे कम से कम मेरी सारी योजना बनाने के लिए। तो कितना ये कितनी हमारी आसक्ति है, और हम ऐसे भाषा में बात करते हैं, अरे मरने के लिए टाइम नहीं है, जैसे कि मरना अपनी इच्छा पर ही निर्भर है, या कभी कोई सोचता है कि मैं अब नहीं मर सकता, इम्पॉसिबल, इतना सब कुछ पड़ा है। ये माया है, यही मोह है। तो जीव को नया शरीर प्रदान करते समय माया शक्ति ये त्रिगुण लेकर, सत्व रज तम, 3 गुणों को लेकर अलग अलग प्रकार से शरीर निर्माण करती है। श्रोत्रम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवच अधिष्ठाय मनश्चैनम विषयान उपसेवते। एक श्लोक में भगवान सारी बात बताते थे कि मन अटक गया है भौतिक भोग में, जैसे भोग वैसा शरीर, जैसे भोग की इच्छा वैसे नाक, वैसे जीवा, वैसे कान। से कोई मुझे बता रहा था कि तोता है वो मिर्ची खाता है, उसे तीखी नहीं लगती, सबसे तीखी से तीखी मिर्ची तो चट चट खा जाएगा। और शुकर कुकर है वो विष्ठा भी खाते हैं, मनुष्य की टेस्ट कुछ और अलग है। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, नाना योनि फिरे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अध पात जाए। अज्ञान के कारण ये जीव कभी यहां कभी वहां, कभी ऊपर कभी नीचे, सब जगह पे घूमते रहता है। नाना योनि फिरे कदर्य मतलब एकदम थर्ड क्लास, निकृष्ट, डिग्रेडेड वस्तु भक्षण करे, खाना पड़ता है। और अधपात श्री कृष्ण जब शरीर लेते हैं तब हमारी धारणा यही होती है इनको ये शरीर किसने दिया। कभी कभी यहां पे लोग पूछते हैं भारत में श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। अरे हम कहते हैं कि वो गीता में समझा रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, उनकी कैसी होगी। अर्जुन को पूरी गीता समझाने का एक मतिथार्थ यह है कि अर्जुन शरीर का मरण होता है, जीव का भी मरण, जीव की मृत्यु नहीं होती। नहीं नहीं वो एक कहानी है कि वो कहीं बैठे थे और किसी ने तीर मारा, वो उनके चरणों में लगा तो मृत्यु तो हो गई ना उनकी। तो देखो आज अभी 7:20-7:30 हो गए हैं, आज के सूरज की मृत्यु हो गई, कहां गया वो, डूब गया। इधर से दिखते इधर कुछ पर्वत है, मेरा रोड वेस्ट के उधर, उस पर्वत के नीचे गया हो, अभी तो दिखाई नहीं देगा। आज ये परिस्थिति ऐसी है, आज मतलब हर रोज होती है, कितना भी बड़ा टॉर्च, कितना भी बड़ा सर्च लाइट लगा दो, आज का सूरज फिर दिखने वाला नहीं है, रात तक तो कम से कम। तो कोई कहेगा अरे आप क्या बच्चों से बातें कर रहे हैं, सूरज कहीं नहीं गया, वो है वहीं का वहीं। सूरज पे ना तो सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त। हम हमारा मुंह फेर लेते हैं तो कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, कल फिर हम सूरज के प्रति उन्मुख हो जाएंगे, मैं सूर्योदय हो गया। तो सूरज जैसे एक जगह स्थित होने पर भी प्रातःकालीन सूरज आराम से देख सकते हैं, 8:30-9 बज गए देखना कठिन होता है, मध्यान्ह का सूरज बिल्कुल ही देख सकते, फिर सूर्यास्त आसानी से देख सकते हैं। सूरज एक एक ब्रह्मांड में स्थित एक भौतिक ग्रह गोल है, अगर उसका ये नजारा या उसका ये हम देख सकते हैं कि वो कभी कभी टूटता नहीं, कभी फूटता नहीं, उसकी शक्ति चलती रहती है। और कृष्ण ने ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कोटि कोटि सूरज बना के रखे हैं, तो उनका क्षय कैसे होगा, उनकी शक्ति कम कैसे होगी या उनकी मृत्यु कैसे होगी। तो जो हमने कल भगवान के आविर्भाव का वर्णन किया था उसके पीछे जो सिद्धांत है वो ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् सृजामि। भगवान के बारे में मैं जन्म लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं, सब प्रकार के शब्द योजना की जाती है, लेकिन उनका जन्म आप और हमारे जन्म जैसा स्त्री पुरुष संयोग से जरायुज अंडज स्वेदज बीजज इस प्रकार से नहीं होता। वो कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं माया द्वारा आता हूं। आप कहेंगे अरे हम भी तो माया द्वारा आते हैं, हम भी तो माया से झगड़ा करते हैं, भक्त लोग बात करते रहेंगे तो माया माया कितनी बार शब्द आता है, अरे ये मत सुनो माया है, ये मत खाओ माया है, यहां बहुत माया है, माया से बचो, माया माया माया। प्रभुपाद समझाते हैं एक बुद्धिमान वैज्ञानिक दो बॉक्स बनाता है, दोनों को कनेक्ट करता है, स्विच ऑन करता है, एक में केक का जो मिक्स किया हुआ सब कुछ है वो डालता है तो आधे घंटे में केक बन जाता है, दूसरे में दूध आदि सब कुछ मिक्स किया हुआ डालता है तो वहां से आइसक्रीम निकलता है। अब आइसक्रीम और केक ये एक दूसरे के विरुद्ध हो गए ना, एक को बनाने के लिए बहुत गर्मी चाहिए, दूसरे को बनाने के लिए बर्फ जैसा ठंडा वातावरण चाहिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि बिजली गर्म है या ठंडी? गर्म। क्यों? क्योंकि उससे ब्रेड बन गया है, केक बन गया, इसलिए। तो फिर आइसक्रीम बना तो क्या वो पिघल जाएगा ना आइसक्रीम? तो आइसक्रीम में तो बिजली से ही बन गया, तो ठंडी भी है कि कभी पहले ठंडी होती है बाद में गर्म होती है? सोच लीजिए, सिंपल सिंपल आपके जीवन में हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। बिजली का विनियोग करके, बिजली का उपयोग करके उससे गर्मी, गर्म वातावरण पैदा करना 350 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल है, उससे -10 डिग्रीज बनाना वो भी पॉसिबल है, केवल बुद्धिमत्ता चाहिए। तो माया जो है, एक माया है महामाया, आप और हमको ये शरीर देने वाली महामाया। भगवान को शरीर प्रदान किसने किया है? बोल गए नहीं, मुझे माया महामाया ने शरीर नहीं दिया है, मेरा शरीर चिन्मय, चित्मय, सच्चिदानंद, दिव्य, अलौकिक, ये सब एडजेक्टिव्स, ये सब विशेषण भगवान के शरीर में लगते हैं। ये माया भगवान की सेविका है। जैसे राजा ने कहा कि मैं आज कारावास जाऊंगा, देखता हूं कौन कौन कैदी है हमारे। तो राजा जब कारावास जाना चाहता है तो उसे क्या करना है? खाली मंत्री को बोलना चाहिए, जो मंत्री बंदीवास कारागृह के मिनिस्टर हैं, प्रिजन मिनिस्टर, के चलो आज हम दोपहर को 2 बजे आ रहे हैं, तो सब उधर साफ सुथरा करके रखते हैं, आज राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। 2 घंटे राजा घूम लेते हैं सब कुछ, कभी अंदर भी जाते हैं किसी रूम में जहां पर किसी को रखा गया है। तो उस समय लोग सोचते हैं आज क्या हो गया, महाराज ने कोई लगता है गलत पार्किंग किया है, या कुछ तो बिजली का बिल नहीं भरा है, या कहीं तो गुनाह किया है। बिना गुनाह किए जेल में क्यों जाएगा वो? तो मूर्ख कैदी जब तक राजा बंदीवास बंदीगृह में है इसी भ्रम में रहते हैं कि जैसे हम वैसा ही है। बोले ये कहां रहेगा, इसके लिए कौन सा रूम मिलेगा, इसके लिए भोजन इधर का ही मिलेगा क्या? उन्हें जब पता चलता है 4 बज गए, राजा कहता है चलो अब मैं जाता हूं, तो कोई कुछ बोलता नहीं, बोले ठीक है जाओ, सब कुछ वही साफ सुथरा होके राजा चला जाता है। यह देखकर एक दूसरा कैदी सोचता है कि दूसरे दिन मैं भी बोलूंगा इस प्रिजन वार्डन से, मैं भी जरा जाता हूं आज। बोले रहो इधर, आप हमारे 7 साल के लिए मेहमान हो। दोनों में अंतर क्या है? राजा उसी कारागृह में रहा, अंदर तक गया, चाहे वहां का उसने पानी भी पिया होगा, लेकिन एक क्षण के लिए भी जो बंदी गृह के अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी मिल गया राजा तो उसको बंद कर देते अंदर। उसकी हिम्मत, वो जो महीने की सैलरी लेता है राजा की मेहरबानी से मिलती है, 100% सभी अवस्था में उस कारागृह में काम करने वाले सभी ये राजा के यह कश्चित चाकर हैं, नौकर है वो उनके। ऐसे राज्य में 25 कारागृह हैं, उसमें काम करने वाले सैकड़ों लोग हैं, राजा इसमें से कोई बड़ा से बड़ा जेल वार्डन होगा। अब हर जेल में कोई तो होता है जो कैदियों को पीटता है, मारता है, और वो आपस में कहते हैं कि इससे डरो, हाँ ये आदमी बड़ा भयंकर है, ये बाकी लोग थोड़े अच्छे हैं, ये जरा ज्यादा भयंकर। राजा को क्या डर उससे, बड़े से बड़ा होगा तो भी वो राजा को पैर, राजा के पैर छुएगा। ये अगर हमको समझ में आता है तो फिर ये बात भी समझनी चाहिए कि श्री कृष्ण जब अवतीर्ण होते हैं तो ये त्रिगुण, ये भूमि, आपा, नलो, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, महत्त्व, सारी सृष्टि, सारी सृष्टि भगवान को नमन नमन नमन, प्रणाम 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 प्रणाम, सब ऐसे थर थर कांपते हैं उनसे। हालांकि श्री कृष्ण की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व ऐसे नहीं है कि कोई उनको सामने देखकर डरेगा, अरे रे बाप रे, लेकिन हमने देखा नहीं है उनका वास्तविक रूप। ये जो छोटा सा बालक, कल हमने उनका आविर्भाव देखा, हमने उनके कुछ बाल लीलाएं देखी, तो जो व्यक्ति इतना कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हर चीज के कंट्रोलर, कोई कहेगा आपका मन उबता नहीं ये सब करके? माधवानंद प्रभु इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, सिंपली वहां पे आराम से बैठे हुए हैं लगेगा नहीं कि यहां के डायरेक्टर हैं वो, लेकिन जब कुछ काम होता है तब सारी यंत्रणा यहां की उनके निर्देशन के अनुसार चलती है। हमारे बचपन में एक गेम खेलते थे हम लोग, अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से एक को बाहर जाना था तो वो बाहर जाके अपना मुंह दूसरी तरफ करके देखता रहेगा। और यहां पर इस सेशन के लिए कोई कहेगा कि आप इस सेशन के लीडर हो, तो मैं अगर ऐसे करते रहूंगा तो बाकी सब लोग भी ऐसे करते रहेंगे, बीच में अचानक मैं ऐसे ऐसे करना चालू करूंगा तो सब लोग ऐसा करना चालू करेंगे। तो उस बच्चे को आके 2 मिनट के अंदर पहचानना है कि इस समय का लीडर कौन है। अब जानते थे ये गेम कभी खेला है, तो केवल कई कई बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो इसको देखते हैं समझता नहीं, अचानक सब चेंज हो गए। जब भी ये ताली बजाने से ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, उनको पता चलता है कि कोई तो है जो सब कुछ परिवर्तित कर रहा है, कौन है लेकिन वो। तो सारी सृष्टि जो चलती है कोई तो चला रहा है। आजकल बड़े से बड़े वैज्ञानिक लोग कहते हैं हाँ कोई तो शक्ति है। अरे मां मूर्ख हो तुम, तो पूछो ना कि कौन शक्ति है वो। किसको पूछोगे, पान वाले से पूछोगे, गैस वाले से पूछोगे, किसको पूछोगे? अगर केमिकल प्रॉब्लम है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जाओ, फिजिक्स का प्रॉब्लम है तो फिजिक्स वाले से पूछो, इंटरनेट प्रॉब्लम है तो इंटरनेट से पूछो कोई एक्सपर्ट से, आध्यात्मिक समस्या है तो किसको पूछोगे? व्यक्ति अगर कान दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पेट दुख रही है, डॉक्टर के पास आएगा, बाकी सब समस्या में उसे पता है कि कोई एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक विद्या में मेरी राय अलग है, मेरे आप लोग हरे कृष्ण करते हो, मेरी दृष्टि से भगवान अलग है। अरे कौन पूछता है तुमको, बाकी फील्ड में कोई पूछता है आपको कि आपकी राय क्या है? तो यहां पे किसने एक्सपर्ट बना दिया हमको आपको? कोई बिजनेस में प्रॉफिट कमाया तो गीता के ऊपर लिखता है, कोई जीवन में फ्रस्ट्रेट हो गया तो वो भी गीता के ऊपर लिखता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको नास्तिक होना है और आप कृष्ण को नहीं मानते तो ऐसी किताब लिखो ना कि मैं कृष्ण को नहीं मानता करके, गीता के आश्रय के आड़ छुप के आप कृष्ण के ऊपर क्यों इतना प्रहार करते हो? प्रभुपाद कहते हैं कि खुद मैं जानता हूं इसका कारण क्या है। बोले ये गीता भागवत इज प्योर गोल्ड, ये विशुद्ध सोना है, स्वर्ण है, इसका नाम डालोगे तो कम से कम 4-5 बेवकूफ लोग उस किताब को खरीदेंगे। अगर कोई कहेगा ये मेरा नास्तिक मत ऐसा है और मेरी किताब ले लो 500 रुपए की, कौन खरीदेगा उस ग्रंथ को? तो श्री कृष्ण जब इतना सबका सबके ऊपर उनका नियंत्रण है, सबको वो वश करते हैं, क्या उनको कभी अपने आप को किसी के वश में होना ये पसंद है? एक उदाहरण है, एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ग्लैडस्टोन, एक 160 या 140 वर्ष पुरानी बात है ये। कोई महाशय उनको मिलने आए, सेक्रेटरी ने पूछा अपॉइंटमेंट है? हाँ है। कितने बजे की? 3 बजे की। अभी कितना टाइम हो गया है? 2:50। बोले ठीक है रुक जाइए। 3 बज गए। बोले प्रधानमंत्री हैं? बोले थोड़े बिजी हैं। 3:15 हो गए। बोले बिजी हैं। 3:30 हो गए। बिजी हैं। 4:15 हो गए। बोले ये ब्रिटिश लोग हैं, ये तो समय के पक्के होते हैं, अभी 45 मिनट हो गए। तो सेक्रेटरी को उन्होंने कुछ तो करके कुछ काम के लिए भेजा और खुद ऊपर चले गए वो मेहमान, और उन्होंने दरवाजे के की होल से देखा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर दादा थे, उनका पोता आया था, उस पोते ने कहा था कि आप प्रॉमिस किए थे कि हम घोड़ा घोड़ा खेलेंगे, 2 हफ्ते हो गए आप नहीं खेले। बोले नहीं 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 आज खेलेंगे। तो ऑफिस में ये ग्लैडस्टोन महाशय ऐसे घोड़े जैसे खेल रहे थे और उनका पोता उनके पीठ पर बैठकर चिक 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 चिक, चलो घोड़ा तेज से चलो तेज से चलो। अब ये क्या है? ये व्यक्ति एक दृष्टि से सबसे पावरफुल आदमी है कैबिनेट का, और उसका पोता कहता है कि आप घोड़ा बन जाओ। क्यों बन गया वो? प्रेम है इसीलिए। अगर ये मेहमान जो हैं अतिथि वो भी कहते थे कि मैं भी घोड़ा घोड़ा करके तो मैं बैठता हूं, तो वो बोलेंगे मुंह देखा है आपका आईने में? ये सबके लिए नहीं है, ये प्रेम का नाता है, ये मेरा पोता है, अरे उसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? यही सूत्र है आज की लीला का, हरि भक्त वश्यता। हरि अपने भक्त के वश में आते हैं, वश वशीकरण, जो ये सब ट्रेन में बंगाली बाबू लिखते हैं कि 10 घंटे में या 2 घंटे में प्रॉब्लम, तो वशीकरण बड़ा प्रॉब्लम है, कोई किसी को पकड़ लिया तो वो छोड़ता नहीं। आप और हम माया द्वारा वश हैं, माया द्वारा लात खाते रहते हैं उसकी, इस समुद्र में भवसागर में डूबते रहते हैं, लेकिन हरि जो हैं वो बड़े प्रेम से, एक सुंदर एक्सप्लेनेशन है प्रभुपाद का कि भगवान अपने भक्त के वश में नहीं, भगवान अपने सेवक के वश में नहीं आते। कोई सेवक पसंद भी नहीं करेगा कि मैं कभी भगवान को वश करूं, भगवान अपने भक्त के प्रेम के वश में आते हैं। ये प्रेम चाहिए, और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसने उसको प्राप्त किया है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो श्री कृष्ण अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जैसे किसी भी बालक का शरीर जैसे बढ़ता है वैसे कृष्ण का भी वैसे ही है। हालांकि वो आवश्यकता पड़े तो बड़े भी हो सकते हैं, एकदम बड़े, लेकिन नंद और यशोदा को उनकी बाल लीला देखनी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप उस समय जो भी उपस्थित माताएं थी, और मुझे लगता है कि हर मां का हृदय प्रभुपाद ने जान लिया, हर मां को यह लगता है ना कि मेरा पुत्र अभी भी छोटा ही है, उसको मैंने जैसे देखा था जब वो इतना सा था बस अभी भी वैसा ही है वो, लेकिन ये भौतिक पुत्र बढ़ते रहते हैं, बढ़े रहते, बड़े 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 हो जाते हैं, फिर कहते हैं अरे मां को भूल गया। ये भौतिक जगत की कहानी है ऐसे ही। एक माता, उनका देहांत हो गया पिछले साल, 7 कन्या और 3 पुत्र, 10 बच्चों का परिवार, यहां कोई है इतना बड़ा परिवार वाला? न नॉर्मली नहीं होता आजकल, सब न्यूक्लियर फैमिलीज होती है सब जगह पे छोटी छोटी। तो ये सात कन्या, तीन पुत्र और पति का बड़ा व्यापार, उस गांव के वे मुख्य थे, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति का। तो मृत्यु के समय ये माता कहती है, अरे मैं तो बांझ ही मरने वाली हूं। अरे क्या बात कर रहे हैं, इतने पुत्र हो गए, इतनी कन्याएं हो गई, उनके बच्चे हो गए, आपका परिवार तो कम से कम उसमें 40 से 45 लोग हो जाएंगे आज अगर पूरे गिनती करेंगे तो। और ये मां को लग रहा है कि नहीं, मैं तो बांझ ही रह गई। बांझ समझते ना, निपुत्रिक। क्यों? क्योंकि जैसे चाहिए वैसे पुत्र प्रेम नहीं दे रहे हैं। कैसे दें? ये थोड़ी नंद और यशोदा और कृष्ण का संबंध है ये। तो जिन किसी को अगर एक पुत्र चाहिए जो कभी बूढ़ा ना हो, कभी मरे नहीं, कभी बड़ा भी ना हो, बूढ़ा तो छोड़ दीजिए, प्रभुपाद कहते हैं आप गोपाल को अपना पुत्र बनाइए। आपको सबसे सुंदर मित्र चाहिए, कृष्ण से मैत्री कीजिए। आपको ऐसा बॉस चाहिए जो कभी आपको गलत काम नहीं देगा, आपकी हमेशा आपका रक्षण करेगा, तो कृष्ण के शरण में आओ। जितने भी सारे नाते, जितने भी सारे संबंध, जितने भी सारे रिश्ते आप चाहते हैं, सब श्री कृष्ण दे सकते हैं। और यही तो कारण है कि प्रभुपाद ने ये इस्कॉन संस्था की स्थापना करके ये कृष्ण विज्ञान लोगों को समझाया। दीपावली का शुभ अवसर, दीप दिए, अवली मतलब ऐसे बड़ी लाइन। प्रभु रामचंद्र अयोध्या जी आ रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने सब जगह दिए लगाकर उनका स्वागत किया। तो इस उपलक्ष में आज भी दीपावली का त्यौहार बड़ा है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सब जगह पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पटाखे फोड़ते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं खास करके बंबई में, अभी थोड़ा कम हुआ होगा नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की सब बातें हैं, लेकिन ये एक हर्षोल्लास की बात है। तो यशोदा मैया के मन में ये बार बार बात आ रही थी कि क्या मेरे घर का दूध ठीक नहीं है, क्या मेरे घर का मक्खन ठीक नहीं है, ये मेरा लाला सब जगह चोरी करने क्यों जाता है। आचार्य बताते हैं ये गोपियां अपने घर में दूध दही मक्खन इसलिए बनाती थी कि एक बार तो गोपाल आके चोरी करें। देखो ये वात्सल्य कैसा विरोधाभासात्मक है। मां सोचती है यही तो क्यों चोरी करता है, घर में नहीं है क्या। और इतनी सारी गोपियां हैं, हमारे आचार्य लिखते हैं कि ब्रज धाम में जितने भी घर थे, हजारों लाखों लोग रहते थे, हर एक के घर में गोपाल गए चोरी करने के लिए। और अर्थात अगर गोपाल आते थे तो ये गोपियां गुस्सा भी करती थी, क्रोध भी करती थी। लेकिन ये सब क्या है, ये यही वात्सल्य रस वृद्धिंगत करने की लीला है। अभी सोचिए, आज तक किसी ने भी अपने घर में, अपने घर के दरवाजे के ऊपर लिखा है कि हमारे यहां कम से कम 5 लाख रुपए के गहने हैं अंदर? अगर कोई गलती से जोर से बोलेगा भी तो डांट पड़ेगी, हे जोर से मत बोलो, चोर आएगा। तो चोर चोरी न करें, इसलिए हम दिन रात कष्ट करते हैं। अरे ये अपने धन, अपनी मेहनत की कमाई है, कोई और ले जाएगा कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। और यहां पर ये चोर आए हमारे घर पे चोरी करें, ऐसे प्रार्थना की जाती है। बड़ा अंतर क्या है इसमें, ये चोर वास्तविक चोर नहीं है, सब कुछ उसी का है पहले से ही। अपनी वस्तु को चोर भी कर सकता ना, आप अपने ऊपर की जेब से कोई पैसा चोरी करके नहीं डाल सकते हैं क्या, एक ही तो बात हो गई। तो कृष्ण सब कुछ जब उन्हीं का है तो किसकी चोरी करें, कहां चोरी करें, कैसे चोरी करें। लेकिन जो ये वृत्ति है कि किसी की चीज उठा के लेने की, इसमें बड़ा आनंद है। आप किसी भी छोटे बच्चों से पूछिए, मेरे बचपन की बात मुझे स्मरण है कि एक बार एक पेड़ था और वहां पे किसान का परिवार रहता था, तो उस पेड़ में इमलियां लगती थी। तो जैसे ही हम जाएंगे उधर, सब परिसर ऐसा था कि अगर चलते समय वो तिनके और इससे आवाज बहुत होती थी, कड़ 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 आवाज आता था, आवाज आती थी, तो उन्हें पता चलता था कि ये बच्चे लोग आ गए इमली तोड़ने के लिए, और वहां से वो लाठी लेके आते थे। तो ऐसा पत्थर मारो कि कम से कम 3-4 इमलियां गिरे, जैसे ही गिरे छट से लो भागो। और एक बार स्कूल के बाहर ही कोई इमली बेचने के लिए आ गया, तो हम दोस्तों ने सोचा चलो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और अच्छा खासा आज इमली खा लेते हैं। तो सबने 8-8 आने 50 पैसे में मिलती थी उस समय, तो बहुत सारी इमलियां मिली और हम सब ने खाई। फिर एक ने कहा वो कल जो 2 इमली मिली थी केवल, वो पेड़ से चोरी करके, उसमें जो मजा आया ये 10 खाने में मजा नहीं आया। तो त्रिगुण में और परव्योम में और दिव्यत्व में वो भावना वही है। खाली यहां पे कोई चोरी करेगा, अगर मैं पकड़ा जाता तो कम से कम एक तो हड्डी टूटती थी मेरी, तो उसमें तो मजा नहीं आता ना। लेकिन दिव्यत्व में जिसकी वस्तु है वो इच्छा करता है कि गोपाल जी गोपाल आए और चोरी करे, क्योंकि इसमें कोई नाश नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई चीज की कमी कभी होती नहीं, कुछ भी वहां पर क्षय नहीं होता। तो क्या क्या किया भगवान के लिए यशोदा मैया ने, हम नॉर्मली समझते हैं कि ठीक है अच्छा दूध लीजिए, अच्छा दूध का मक्खन बनाइए, दही बनाकर उसका मंथन कीजिए तो अच्छा मक्खन आएगा। नहीं, नंद बाबा और यशोदा मैया का प्यार कितना ऊंचा है। कुछ ऐसा घास उगता था ब्रज में जो पद्मगंधा नामक कुछ ऐसे गायें थी, उनको ही खिलाया जाता था। उन गाय का जो दूध निकलता था वो, उसके बीच में भी 2-3 स्टेजेस हैं कि ये गाय का दूध दूसरी गायों को, और ऐसा फिल्टर फिल्टर करके फिर कुछ ऐसी बहुत गिनी चुनी गायें थी 100 जिनको ये बाकी गाय का दूध और ये पद्मगंधा घास, उनका जो दूध था ओ यशोदा मैया ने सोचा कि ये गोपाल के लिए अति उपयुक्त है। अब सोच लीजिए इसमें बहुत कष्ट किया हुआ है, ऐसा दूध उसका दही लगाकर यशोदा माई मंथन कर रही है, खुद क्यों कर रही है, वो तो रानी है। उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दासियां हैं और इतना सब है, लेकिन अगर मुझे मेरे पुत्र की चोरी करने की आदत अगर बंद करनी है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह भी वात्सल्य भाव में ही आता है। तो स्वयं और सुखदेव गोस्वामी एक इतना सुंदर श्लोक बताते हैं उसमें, तो प्रभुपाद कहते हैं जिस किसी को वात्सल्य भाव क्या है या वात्सल्य भाव का आस्वादन करना है उनको ये श्लोक पढ़ना चाहिए। इस दृश्य के ऊपर सदैव चिंतन करना चाहिए। क्षौमम वास, एक पीले रंग की, प्रभुपाद कहते हैं सैफ्रन येलो, सैफ्रन गेरुआ रंग जैसे होता है पीला, उस वर्ण का उस रंग का उन्होंने, जो ब्रजवासी महिलाएं माताएं पहनती है लहंगा, उस प्रकार का लहंगा उन्होंने पहना था, कंगन, चूड़ियां, कर्णकुंडल, और मंथन करते 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 वो गीत गा रही है, गीतानि तद बाल चरितानि च। वो भगवान की मां है लेकिन फिर भी भगवान के लिए काम करते समय मुख में भगवान का नाम, मुख में भगवान का चरित्र। और प्रभुपाद समझाते हैं ये आप और मेरे लिए हिंट है। आप हाथ से कोई भी काम करो ना, आप यहां पे लिफ्टमैन है या सर्जन है, आप कोई प्रोफेशनल है या घर की गृहिणी है, आप अपने लिए अपने परिवार को कृष्ण भक्ति में रखने के लिए हाथ से कोई भी काम करते रहो, मुख से हमारा जो नित्य कार्यक्रम होता है मंदिर में, मंगल आरती का मतलब क्या है, मंगल कार्य करने वाली आरती, सब कुछ मंगलमय करने वाली। प्रभुपाद ने अपनी इच्छा से श्री विश्वनाथ चक्रदेव ठाकुर का गुरुवाष्टक, ये जो एक 8 श्लोकों की प्रार्थना है, उसका चयन किया। उसके पश्चात भक्ति में रक्षा की प्रार्थना करने के लिए हम नरसिंह देव को पुकारते हैं, उसके बाद तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं, फिर नाम जप, भगवान का दर्शन, श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं, फिर भागवत पाठ करते हैं। इस प्रकार से एक के बाद एक आप देखेंगे कि कृष्ण भक्ति में हर समय नृत्य गीत ये है ही। मैं स्वयं, मैंने जब देखा हरे कृष्ण लाइफस्टाइल, मुझे सब अच्छा लगा, केवल डांसिंग, मैंने कहा ये अपने से नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही कंडीशनिंग था, ऐसा नहीं कि बहुत विद्वान ऐसे कुछ भावना से नहीं करा था, लेकिन मैंने कहा ध्यान करो, पढ़ाई करो, फिलोसॉफी देखो, बातचीत करो, ये हाथ ऊपर करके डांस करने की जरूरत क्या है। फिर जब पता चला कि अगर कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं डांस करेंगे तो माया के लिए डांस करना ही पड़ेगा, प्रभुपाद को पूछा गया कि हाथ ऊपर करके डांस करने की जरूरत क्या है, बोले हाथ ऊपर मतलब जैसे किसी ने पीछे से गन लगाई हो, हम कहे बाप रे सरेंडर, मैं शरण आया हूं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और उन्होंने ये दोनों हाथ ऊपर करके संकीर्तन, एक बार प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम है जहां पर नृत्य है, गीत है, सुंदर प्रसाद है, तो फिर किसको इसमें ऑब्जेक्शन रहेगा, किसी को आपत्ति है इसमें। हम यहां आप 2-2.5 घंटे पिछले 8 दिनों से लगातार अपना घर का काम, अपना प्रोफेशनल काम सब कुछ संभाल कर यहां पर आ रहे हैं, क्यों? हम यहां पर कोई पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हम यहां पर कोई लॉटरी डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है यहां पर? आपको मालूम है जो कोई भी भौतिक उपलब्धि नहीं दे सकती, मन को शुद्ध करने वाली कृष्ण कथा यहां पर हो रही है। और चाहे कलयुग हो, द्वापर युग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, कोई भी ब्रह्मांड हो, ये जो है ना कि एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं और चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, किसका विचार हो रहा है? जो आचार्यों ने पहले से कहा है उसका। मैं अगर यहां अपनी मन की बात करूंगा तो उसका कोई महत्व नहीं है, आप अगर अपनी मन की बात डालेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। जो आचार्यों की वाणी है उसी को हम चर्चा करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि अरे इसमें तो बड़ी टेस्ट है, इसमें बड़ा स्वाद है। तो गीत गाना भगवान का, ये स्वयं उनकी मां बता रही है अपने उदाहरण से। और जैसे पहले कहा कि ये दूध इतना महत्वपूर्ण और इतना दुर्लभ, इतना मूल्यवान, तो उसको मंथन करते करते पसीना छूट गया मां को, कोई कहता है कि भक्ति मतलब सब आराम से होना चाहिए, नहीं, इसमें भी कष्ट है। कष्ट केवल अंतर इतना है कि कृष्ण के लिए कष्ट है। तो व्यक्ति किसी को लगता नहीं कि मैंने बहुत काम किया है, नहीं, हमें पता है कि भगवान ने सब हमको सहायता की है इसमें। तो यशोदा मैया के केश में जो मालती के पुष्प लगाए थे, उन्होंने हार पहने थे, वो इतना विगरस, इतना, मैंने एक ही बार ट्राई किया है, मंथन बड़ी मेहनत लगती है उसमें लगता है उतना आसान नहीं है वो, लेकिन एक टेक्निक है। आज सब लोग अपने घर में डालकर बिजली बटन दबाकर करते हैं, लेकिन ये जो करने का मजा अलग है। ये वात्सल्य रस की मूर्ति है, ये छवि के यशोदा मैया अपने लाला के लिए दही मथ रही है। उन्होंने देखा कि उनकी साड़ी जो लहंगा पहनती है तो उसको पकड़कर गोपाल आ गए। बोल तो नहीं रहे थे कुछ, अभी बोलने का इतनी आयु नहीं थी उनकी। उन्होंने अपने इशारे से दिखाया कि ये सब काम छोड़ो, मुझे दूध पीना है। कृष्ण के गीत, कृष्ण के चरित्र गाते गाते ही मैया के शरीर से दूध चूरने लगा, इतना प्रेम, और गोपाल दूध पीने लगे। अचानक मैया को ये ध्यान में आ गया कि ये दूध मैं, ये दही तो मैं मथ रही हूं, लेकिन वो दूध तो मैंने चूल्हे पे रखा है, अगर वो उबल कर बाहर आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। अब ये क्या है, भगवान तो यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ भुक सबसे प्रथम उनको ही देना चाहिए। लेकिन मां ने सोचा, एक तो भगवान को संतुष्ट करूं, या उनको संतुष्ट करने के लिए जो वस्तु से मैं उनकी पूजा करनी चाहती हूं, सेवा करनी चाहती हूं, वो नष्ट हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो 2 सेकंड के लिए, 2 निमिष के लिए उन्होंने गोपाल को थोड़ा सा जोर लगाकर बाजू में रख दिया और वो उठकर चली गई देखने के लिए कि दूध उबल रहा है कि, वो डर के मारे, और दूध अगर उबल रहा है तो थोड़ा पानी की छिटे मार के या उसको नीचे उतार लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। बस इतना काफी था, इतना पर्याप्त था कि गोपाल अत्यंत क्रोधित हो गए। अब एक आधा 1.5 वर्ष की आयु का बच्चा वो कितना क्रोध करेगा, लेकिन नहीं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उनके लाल लाल होंठ चबाने लगे वो, और अभी कुछ तो करना है, मतलब क्या नुकसान करना है, कुछ तो किसका नुकसान करें, क्या करूं, ये तोड़ूं वो फोड़ूं। तो देखे तो ब्रज की ये सिस्टम है कि दूध दही जो भी है उसको मटके में डालकर ऊपर टंगा के रखते हैं। तो उन्होंने एक पत्थर लिया, थोप करके एक मटके को फोड़ दिया तो उसमें सारा दही सब नीचे आने लगा। किस मटके से मक्खन नीचे आ रहा है, और वो मक्खन लिया, थोड़ा सा खाया, फिर थोड़ा सा लेकर, वो सब कमरे में सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, उधर से चलते 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 दूसरे कमरे में गए। अभी कोई चोर होगा तो कम से कम ऐसे चलेगा ना कि दूर से जाएं ताकि पता ना चले कि ये कहां गया है, लेकिन बुद्धि नहीं है उतनी भगवान के बारे में हम कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं है उनकी, ये भी वात्सल्य रस की बात है। तो जैसे ही ये कितने क्षण में हो गया, ज्यादा नहीं, एक आधे मिनट में, और मैया वापस आ गई, देख रही है कि अरे यहां तो नहीं है। दूसरे कमरे में देखा तो सब कुछ विध्वंस, सब कुछ टूट फूट गया है, और छोटे छोटे चरणों के निशान है उधर। बोली ठीक है, अभी ये बहुत अधिक उधम करने लगा है, इसको आज अगर मैंने ठीक तरह से समझाया नहीं तो आगे चल के नुकसान हो जाएगा उसका। अब कोई सोच सकता है कि अरे मैया वो परम ब्रह्म है, वो ज्ञान से पूर्ण है, और ऋषि बड़े लाखों ऋषि मुनि को उपदेश करते हैं, उनको क्या ज्ञान देगी आप? नहीं, लेकिन उनका मन तो एक मां का है। लेकिन इस समय उनको क्रोध भी आ गया, तो एक छड़ी ली पहले हाथ में और फिर धीरे 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 देख रही कहां पे है वो। तो बंदर आए थे, बंदर क्या है वृंदावन में तो रेडी है वो, जैसे आप कुछ मैंने कई बार देखा है कितनी माताएं ऐसे कुछ छुपा के जाती है, उनको पता है कि अगर कोई ऐसे जा रहे मतलब हाथ के पीछे कुछ तो है। कई लोग बाहर से आते उनको पता नहीं कि मामूली कबूतर है गाय है, उनको आप एक केला दो तो खा लिया, फिर दूसरा दो तो भी खा लिया, कोई कबूतर है चार दाने डालो फिर वो देखते रहेंगे। वृंदावन के बंदर ऐसे नहीं है। एक बार एक आदमी ने ऐसे चने का पूरा जो पाउच था वो ऐसे खोलकर ऐसे दे रहा है, ए बाप रे, दूसरे ने के फैस करके पूरा हाथ से ले लिया, ऐसा डर गया वो, मेरे ख्याल से उसने कभी जीवन में देखा नहीं था कि कोई बंदर ऐसे कर भी सकता है। और फिर सारा फैल गया, फिर वो सारा उनका कबीला आ गया और सब ऐसे ऐसे करके खाने लगे। एक बार एक बंदर ऐसा एक चने का पाउच था वो पुड़ी वो ऊपर ले गया और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है, खोल ले रहा है और मैं ऐसा फाड़ लिया, ऐसा उठा करके देख रहा है, सारा सामान नीचे गिर गया, बाकी लोग बंदर खा रहे, वो देख रहे कहां गया, अभी तो था इधर सब कुछ, अभी था अचानक कहां चला गया पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनकी जो छीनने की भावना है वो कोई नहीं रोक सकता उसमें। तो ये बंदर खा रहे हैं। गौर गोविंद महाराज एक बार बताएं कि प्रभु रामचंद्र ने वानर सेना से इतना काम करवाया, सारी सेना तो वानरों की थी, तो उन सारे वानरों को अयोध्या लेके आए, उनको बहुत कुछ दिया, फिर भी उनके मन में एक इच्छा थी कि उनको मैं अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने वही सारी टीम को अगली लीला में बुला लिया कि आप सब वृंदावन में आ जाओ और वहां पर आपको मैं जितना चाहिए उतना मक्खन, इतना चाहिए उतना मिठाई बिठाई सब खिलाऊंगा। तो ये सारा दही सब मक्खन पड़ा हुआ है, सब बंदर खा रहे हैं, बंदर भी खा के तृप्त हो गए। लेकिन गोपाल एक कोने से देख रहे हैं कि इधर से शायद मैया आ जाएगी। और जैसे ये उनकी मक्खन बांटने की लीला समाप्त हो गई और उन्होंने अपनी मां का रूप देखा, देखा तो उसकी आंखें क्रोधाविष्ट हैं, हाथ में छड़ी है, अरे बाप रे, छड़ी देख के तो भाग गए सीधे। अब मां को यह लगा कि पहले मुझे लगा कि ये डर के रोएगा, मैं ऐसे किया मैं वापस नहीं करूंगा, ये भाग रहा है मतलब अभी इसके माइंड में ये अभी अच्छा खासा डिटरमाइंड क्रिमिनल ऐसे होता है ना ये अभी बहुत अधिक उद्यम कर रहा है, आज तो मैं इसको ठीक करके ही रहूंगी। और इतनी विशाल शरीर वाली मैया जिसका बहुत आयु भी हो चुकी है और वो भाग रही है, फिर एक किसी गोपी ने अपने आंगन से देखा है क्या हो रहा है, उसने दूसरी को बुलाया, तीसरी को बुलाया, चौथी को बुलाया और ये भाग रही है, रुक 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 तू रुक पहले तू रुक, और ये डर के मारे इधर उधर इधर उधर इधर सब लोग भाग रहे हैं। इसको देखने के लिए बड़े बड़े महर्षि ज्ञानी जो ऐसे एकदम आंखें मीच करके ऐसे ध्यान में लगे हैं, जब किसी ने कहा कि अरे जिसका ध्यान कर रहे हो देखो क्या कर रहा है नीचे तो कई लोग होते हैं ज्ञान मार्ग में, उनको ये थोड़ा सा ऐसे सस्पिशन, थोड़ा सा एक कहीं पे पड़ा होता है कि कृष्ण ही परब्रह्म है, कृष्ण ही परब्रह्म है, तो ये वेद तो लिखते हैं वो तो ऐसे हैं और ये तो बिल्कुल ही छोटा बालक जैसा ये लीला कर, ये दोनों का कैसे तालमेल किया जाए। फिर वो बाकी किसी अधिकारी अथॉरिटी से पूछते कि सही नहीं यही परब्रह्म, हाँ यही परब्रह्म है। तो फिर वो मैया की बुद्धि के ऊपर ऐसे करते कि अरे भोली गोपी तू क्या कर रही है, ये परब्रह्म नहीं पकड़ा जा सकता, हम इतने कोटि कोटि वर्ष ध्यान करते हैं हमने उनका नख तो कभी दर्शन नहीं किया है, तू क्या पकड़ेगी उसको। ये सब बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी तप तपस्वी और ऐसे मामूली दो साल तीन साल तप किए हुए नहीं, हजारों साल तप किए हुए तपस्वी लोग ये सब देख रहे हैं, देवताएं देख रहे हैं, अर्थात ये सब देख रहे हैं आनंद ले रहे हैं। लेकिन ब्रजवासी गोपियां मां उनके पीछे भागते भागते केश खुल गए, सारे पुष्प जो थे वो गिर रहे हैं, और कृष्ण एक वर्णन उनका ऐसा है कि वास्तविक आंख में आंसू नहीं आ रहे हैं लेकिन वो आंखें जोर जोर से मल के लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अगर पकड़ा जाए तो पता चलेगा कि ये रो रहा है करके। लेकिन जब देखा कि मां थक गई है तो उन्होंने अपने आप ही मान्य कर लिया कि ठीक है पकड़ो मुझे। आचार्य समझाते हैं कभी भक्त को अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान को पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, यह एक अपराध है। अपनी बुद्धि में क्या समाएंगे वो। मैया का यह उदाहरण है कि उसकी भक्ति इतनी शुद्ध, उसकी भावना इतनी शुद्ध, अपने आप स्वयं ही भगवान मान लेते हैं कि ठीक है पकड़ो मुझे। और जैसे ही उन्होंने पकड़ लिया तो उन्होंने काजल लगाया था और गोपाल ने आंखें ऐसे रौंद के सारा मुख काला कर दिया था, वही अश्रु जबरदस्ती लाए अश्रु और वो सब गाल वाल पर लगे, उसमें बड़ी सुंदर लग रहे, अति सुंदर लग रहे थे वो। काफी प्रचुर मात्रा में इसके ऊपर आचार्य टीका टिप्पणी करते हैं, विशेष करके किस प्रकार से जो व्यक्ति या जो पुरुषोत्तम दूसरों को भय देता है उसको भय कैसे। अगर भगवान भी रोने लगे तो भगवान का है कि वो। एक भागवत का श्लोक है, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्र दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से, कपिल शिक्षा में भगवान स्वयं कपिल बताते हैं, मेरे भय से वायु संचार करता है। ये जो हम देखते हैं कहीं पे साइक्लोन आ गया, कौन बना सकता है ऐसे साइक्लोन, इतना फैन कहां पे है इतना वायु पैदा हो सकता है उससे। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, इस सूर्य को किसने आज्ञा दी है कि इतना तपो आप। जैसे किसी मामूली कारखाने में एक फर्नेस होता है, वो फर्नेस के लिए वहां पर 10 इंजीनियर खड़े होते हैं, उसमें फर्नेस ऑयल डालना पड़ता है, थर्मोस्टैट होता है, अरे ज्यादा बढ़ गया बंद कर दो। ये सूरज इतना तप रहा है, कौन तेल दे रहा है उसमें। कभी आपसे किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है कि थोड़ा सूरज ठंडा पड़ रहा है भाई, कल तो थोड़ा तेल दे दो। नहीं, इस बार तो हीट वेव ने 2000 लोग मर गए इंडिया में, और सूरज यहां से 90 करोड़ मील है दूर, कौन दे रहा है इतनी शक्ति। भागवत में कपिल मुनि कहते हैं सूर्य स्तपति, इसमें भय का मतलब होता है जैसे कोई किसी प्रोजेक्ट का लीडर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो कहेंगे ये ऐसा होना चाहिए तो हो जाता है ना, क्योंकि लोग उनके चाकर हैं, उनके किंकर हैं, उनके सेवक हैं। वर्षति इंद्र, जो वर्षा देने वाले इंद्र है वो भी उनके सेवक है। दहति अग्निर, दाह जो अग्नि की दाहकता है ये कृष्ण के भय से होती है। और कुंती देवी जैसे अपनी कथा में अपने स्तुति में कहती है, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, याते दशा, अरे कृष्ण ये क्या आपकी दशा है। कलिल अंजन, काजल जो लगाया है, कलिल अंजन संभ्रमाक्षम, ये अंजन पूरा मलके मलके अपने पूरे मुख पे ये फैला दिया है। यशोदा मैया के डर से आप, उसके मार के डर से आप डर रहे हैं। मैया को मारना नहीं था उनको, केवल उनको शिक्षा देनी थी, तो उन्होंने छड़ी फेंक दी। गोपाल ने कहा चलो कम से कम एक तो बला मिट गई, कम से कम छड़ी की मार तो पड़ने वाली नहीं है। लेकिन डांट रही थी बहुत, और मैया ने देखा था कि जो दही मक्खन का जो मटका फोड़ने के लिए, वो तो बालक तो छोटा है, तो जो उखल जिसमें मसाला पीसते हैं उस उखल को उल्टा करके गोपाल उसके ऊपर चढ़े थे। तो बोली ये गुनाह में ये तुम्हारा साथीदार है, अब रहो इसी के साथ। तो उनको लेके आए और बोले अभी इसको बांध दूंगी मैं, अब खेल बंद, भोजन बंद, कुछ नहीं करना, यहीं पे बंदे रहना पड़ेगा आपको। गोपाल डर के मारे कुछ नहीं कर रहे। और मैया ने कहा कि चलो, एक रस्सी लाने के लिए कहा किसी को, तो रस्सी लेके आए। जैसे ही गोपाल के उनकी छोटी सी कमर उस पर से रस्सी ले ली, दो उंगली छोटी, तो उन्होंने कहा अरे और एक लेके आओ। उसको उसको पीछे से जोड़ दिया गया, फिर उसको बांधने की कोशिश की, दो उंगली छोटी। बोली ये कैसे हो रहा है, और एक बुलाई और एक बुलाई। फिर कोई पड़ोसी गोपी थी, वो अपने घर से लेके आई, वो भी कम पड़ रही है। 10-100 अलग अलग घर से लोग इतनी रस्सियां ला रहे हैं। कोई कहा कि क्या रस्सी की दुकान लगा रही है, रस्सी का सेल लगाए, क्या कर रहे हैं आप। बोले सब हंस रही है कि मैया आज गोपाल को बांध रही है और बांध नहीं सकती। वास्तविक पीछे से हजारों लाखों रस्सियां बांधकर देख रही है वो, लेकिन जैसे उनके कमर पर लाए तो दो उंगली छोटी। और मां देख रही है कि जो एक काला धागा बांधते हैं ना, किंकिनी करके कहते हैं, वो भी था। बाकी जो गोपाल के शरीर पर आभूषण थे वो भी वैसे के थे जैसे कहते से। बोली बाकी शरीर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जो पहले वाला काला धागा वो भी वैसे के वैसा है, यही क्यों कम पड़ रहा है दो उंगली। कारण यह है, भगवान को बांधना ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं बांध सकते। हम भक्तों के लिए आचार्य लिखते हैं, भक्ति में प्रगति के लिए, भक्ति में यश के लिए दो चीजें आवश्यक है, हमारा प्रयास और कृष्ण की कृपा। ये वो दो उंगलियां। एक व्यक्ति से मैं कह रहा था कि आप मंदिर आइए, वहां पर भागवत कथा होती है, दर्शन सुंदर है, प्रसाद मिलता है, संग सत्संग होता है। वो कहता है कि हुक्म नहीं आया अभी तक। हमने कहा किसका हुक्म? बोले भगवान का, उनका घर है तो उनका बुलावा आने पर ही आएंगे ना। वो मुझे समझा रहे हैं, देखिए जब तक उनका बुलावा नहीं आता तब तक कोई भक्त नहीं बन सकता, सब कुछ उनके हाथ में है। तो मैंने कहा आप जो आज जो कर रहे हैं, बोले वो भी उनकी इच्छा ही है। एक मेरे परिचित हैं, वो कहते हैं कि मैं मुंबई में जहां घूमने जाता हूं, अगर मैंने गली में गया तो वहां पे मुझे एक बार दिखाई दिया तो मैं सोचता हूं कि भगवान की इच्छा है कि आज मैं आज अल्कोहल पीऊं। मैंने तो बनाया है दुकान, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूं। मेरी पक्की धारणा है कि सब कुछ भगवान कृपा से ही होता है। तो कलयुग है कलह और दाम्भिकता, ये है वो दाम्भिकता। कोई कहता है कि भगवान ने अभी तक बुलाया नहीं, कोई कहता है कि भगवान ने आदेश दिया है कि ये 16 माला करो। कहां पे लिखा है गीता में कि 16 माला करनी चाहिए? किसी को श्लोक मालूम है? नहीं ना। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, 24 घंटा मेरा जप करो। जो प्रभुपाद है वो कहते हैं 2 घंटे करो, बहुत हो गया। आदेश ये नहीं है। कोई कहते हैं कि कहां से आप लोग हरे कृष्ण वाले लाते हैं ये 16 और ये 20 और, अरे भगवान तो कहते हैं कि 2400 घंटे सातों दिन 365 दिन साल के सारा जीवन उसी के लिए दे दो। नहीं नहीं, फिर 16 ही ठीक है। और कम से कम मेरे अपने जीवन में भी सोचता हूं कि आज की 16 माला हो गई, हो गई, होमवर्क हो गया। ये साधक दशा है। यशोदा मैया और गोपियां हैं, हम उनकी नकल नहीं उतार सकते। हम कभी अपने आप में ये चर्चा नहीं कर सकते कि मुझे भी यशोदा बनना है, महान अपराध है ये। हमको शुद्धिकरण के बाद भी यशोदा जैसे शुद्ध भक्त का सेवक या उनकी सेविका, ये बड़ा सुंदर, ये बड़ी सुंदर अभिलाषा है। तो एक छोटी सी लीला में भगवान ने कितने उपदेश दिए। ये उखल बंधन लीला ही है हरीर वश्यता। हरि कैसे वश होते हैं अपने भक्त का, वश्य भक्त की वश्यता, भक्त कैसे उनको कंट्रोल कर नियंत्रित कर सकते हैं, किससे? प्रेम से। हम अगर हमारी साधना, मैंने इतना तप किया है, मैंने निर्जल उपवास किया है, मैंने इतना किया है, भक्ति गुरु ठाकुर कहते हैं कि जितनी आप डिंगे मारोगे उतना आपका हृदय पाषाणवत बन जाएगा। आप सोचेंगे मैं ही अच्छा हूं, ये बाकी लोग कितने भोगी हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, या जितना मैं तपस्वी हूं उतना बाकी कोई तपस्वी नहीं है। अरे हमारी तपस्या अगर हरिदास ठाकुर के साथ तुलना की जाए तो क्या रहेगी, सनातन गोस्वामी की तपस्या थी तो क्या रह जाएगी। हम केवल अपने आसपास पड़ोस के भक्तों को देखे कहते हैं कि उनसे मैं अच्छा हूं। जैसे परीक्षा में किसी को 100 में से 17 मार्क मिले और किसी को 8 मिले तो 17 वाला कहेगा मैं तुमसे दुगना बड़ा स्कॉलर हूं। अरे फेल तो दोनों हो गए आप, स्कॉलर की बात छोड़ो, अभी तक पास भी नहीं हुए और आप कह रहे कि कम से कम तुलना की दृष्टि से मैं इनसे अच्छा हूं ना। तो इसीलिए तप भी करना है, तप करना आवश्यक है, तपसा ब्रह्मचर्य न शमेन दमेन, इन सब वेद अंगों के बिना प्रगति नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी राजी खुशी, हमारा स्वीकार, ये पहली उंगली कि भगवान मैं ये करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, ये जो दूसरी उंगली है आपकी कृपा की वो आप दीजिए। भगवान की कृपा सद ग्रंथों का श्रवण करने से, वैष्णवों का संग करने से, धाम की यात्रा करने से, प्रसाद सेवन करने से, कई प्रकार से कृपा आ सकती है। एक बार गिरिराज महाराज प्रभुपाद के एक बड़े वरिष्ठ सीनियर सन्यासी शिष्य बता रहे थे कि कई बार भक्त पूछते हैं मेरे जीवन में मुझे ये करना चाहिए, ये कृष्ण की इच्छा है, कैसे पता चलता है? मैं तो इतना महान हूं नहीं कि कृष्ण मुझे आगे बताएंगे। उन्होंने कहा एक सिंपल टोकन है, सिंपल इंडिकेटर है, आपसे सीनियर, आपसे वरिष्ठ, आपसे अधिक प्रगत, अधिक उन्नत ऐसे जो भी भक्त हैं जिनके साथ आपका एक पर्सनल रिश्ता है, पर्सनल संबंध है, आपने उनके पास जाकर अगर अपना हृदय खोल दिया कि मेरी ऐसी ऐसी समस्या है मैं क्या करूं, गुह्यम अख्याति पृच्छति, आपने वैष्णवों को गुरु तुल्य मानकर उनके सामने अपना हृदय खोल दिया, फिर उस समय वो जो भी कहेंगे समझ लेना कि कृष्ण की यही इच्छा है, क्योंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में देख रहे हैं कि आप कितनी निष्ठा से, कितनी प्रामाणिकता से अपना हृदय खोल रहे हैं, और जितनी प्रामाणिकता आप दिखा रहे हैं उतने ही प्रमाण में भगवान उनसे आपको उपदेश देंगे जो भी उनके मन की इच्छा है। कई बार भक्त कहते हैं कि मैंने ऐसे ही एक दिन भागवत ग्रंथ खोला और ऐसे ही पढ़ने लगा और पता चला जो मुझे चाहिए था उधर ही है। सनातन गोस्वामी पाद भागवत को मदैक बंधो, मेरा एकमात्र मित्र है ये, करुणैक सिंधु, करुणा का सागर है। तो भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये आपका मित्र भी हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन मेरा भी ये प्रयास है कि मैं इसको अपना मित्र बनाऊं, तो आपके सबके आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं मैं ये बोलते समय। सारे महर्षिगण ये सब देख रहे हैं कि यशोदा मैया की ये अवस्था देखकर फाइनली आखिर में ये दोनों जो एंड थे दृष्टि के वो मिल गए और सब मित्र आ गए, गोप मित्र देख रहे हैं कि आज तो मैया का, मैया की भावना बड़ी आज कठोर है और हमारा प्रिय मित्र गोपाल उखल से बंधा हुआ है। ये सब जो घटना हुई उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। यशोदा मैया भी अपने घर कार्य में लग गई, सारे बाकी बंदर बंदर थे वो भी चले गए कि अभी तो कुछ मिलने वाला नहीं। यहां पर बालक थे वो सोच रहे थे कि कुछ करके इसको खोल देवे, लेकिन पता चला कि अगर मैया इतनी गुस्सा हुए तो हमको भी पीट देगी। तो उन्होंने कहा चलो आज ये तो खेलने में नहीं आएगा, हम जा रहे हैं। बचपन में अगर अपने दोस्त खेल रहे हैं और हमको खेलने नहीं मिल रहा है तो बड़ा गुस्सा आता है। तो सब चले गए और अब बाकी क्या है, क्या काम बाकी है अभी, उखल से बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान का एक कार्य था, तो कोई नहीं, वहां पर अकेले हैं। उखल को घसीटते हुए धीरे धीरे आंगन से बाहर आ गए। थोड़े से एक स्थान पर दो विशाल वृक्ष थे, अर्जुन के वृक्ष। आज भी अर्जुन के पेड़ की जो छाल है वो प्रॉपर लिखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसको, हार्ट डिजीज के लिए वो काम की बात है। अभी मुझे याद आ गया, मैंने भी वो दवा ली थी ब्लड प्रेशर के लिए। तो क्यों जा रहे वो और इन्हीं दो वृक्षों में क्या रखा है, बाकी कोई नहीं जानता। इसके पीछे बड़ी अद्भुत कहानी है कि नारद मुनि ने दो देवताओं को शाप दिया था। हां, देवताओं को भी कभी कभी शाप मिलता है। कुबेर एक यक्ष कुटी के देवता हैं और उनके पास इतना धन है, इतना धन है, उनको देवताओं का कोषाध्यक्ष कहते हैं, कोष संपत्ति का उसको संभालने वाले, और जिसको हिंदी में हम बंबई में कहेंगे बड़े बाप के बेटे। तो ऐसा बाप, तो उसके दो बेटे मणिग्रीव नलकुवर। पिता के पास इतना, इतनी संपत्ति है, इतना धन है कि क्या करें उसको। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिले थे, मारवाड़ी थे वो, बिजनेसमैन। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई, बोले हमारे यहां किसके पास इतना धन है कि उसको दीमक लग गया है। तो ये मुझे नई बात समझ में आई कि धन को भी दीमक लगता है, मतलब इतना पैसा है कि समझ में नहीं आए क्या करें उसको। इनको नारद मुनि ने शाप दिया। शाप सुन के परीक्षित महाराज, जो इतना ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हैं, बोले गुरु महाराज एक मिनट, क्यों शाप दिया, वो देवता है, कहां शाप दिया, नारद ने दिया, क्यों दिया। कल मैंने बात की थी कि भागवत भी श्रवण करना है तो चिकित्सक वृत्ति से जितना भी सुनने में आए, जैसा भी सुनने में आए, अगर मन में कोई जिज्ञासा है त्वरित तुरंत उसको प्रकट करना चाहिए। कम से कम ये कृष्ण भावनामृत संघ इसीलिए बनाया गया है कि हमारे प्रश्नों का सही समर्पक पूर्ण उत्तर मिले। क्यों, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि स्पिरिचुअल लेक्चर मतलब वही होना चाहिए जो किसी को समझ में ना आए। कैसा था स्वामी जी का प्रवचन, अरे बड़ा ही स्पिरिचुअल था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर अध्यात्म के नाम पर ये केवल एक आडंबर होता है, केवल एक ढोंग होता है। जैसे जख्म हो गई है और बड़ा बैंडेज लगाया है, लेकिन दवा नहीं अंदर कुछ भी, तो क्या खाली बैंडेज से काम हो जाएगा? जख्म और बढ़ जाएगी। भारत और भारतीयों की जो आज की धारणा है वो ये है कि किसी भी साधु के पास जाओ तो उसको प्रश्न मत पूछो, अपमान है वो। तो ऐसे भी साधु निकलते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं वैसे, और उनको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि जाओ उनके पास, चरण छुओ उनके, बोले महाराज आशीर्वाद दो। महाराज कहते हैं आशीर्वाद क्या मांगा इनको पता नहीं, क्या दिया इनको पता नहीं। गौर गोविंद महाराज कहते हैं प्रणाम और प्रणामी एक ऐसी बात है जिसमें गुरु को प्रणाम करो और सामने गुलक में प्रणामी डालो, काम हो गया। ये बड़ा ही खतरनाक है। एक कुंभ मेला में, मैंने कुंभ मेला में सुना हुआ उदाहरण है ये, एक बड़ा सा काला सर्प और उसको चुभने वाले, काटने वाले हजारों हजारों काली चींटियां। तो एक प्रवचन के समय वो बात दिखी तो एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु महाराज ये क्यों ऐसे इसको इतना दुख भोगना पड़ रहा है? उन्होंने कहा ये पूर्व जन्म का एक भोंदू गुरु है और उसको कंट्रीब्यूशन देने वाले ये सारे उसके शिष्य, क्योंकि उसने कभी उनको सही गुरु परंपरा से जो ज्ञान आता है वो नहीं दिया, धन तो लिया लेकिन। तो ये सब शिष्य भी इस रूप में लेके उसका बदला ले रहे हैं। तो ये मामूली बात नहीं है। प्रभुपाद कई बार बोलते थे गुरु बनना आसान है, जो आपने गुरु महाराज ने बताया वही बताया करो। फिर कहते थे कि गुरु बनना बड़ा कठिन है क्योंकि उत्तरदायित्व तो लेना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज मरणासन्न अवस्था में भी जब भी कोई समय कुछ समझाने तो प्रश्न है मेरा, नारद मुनि ने क्यों शाप दिया? सबसे पहली बात है कि देवताओं को शाप देने की आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, नारद, अरे नारद मुनि तो एकदम प्रेमी, एकदम सुहृद जैसे व्यक्ति हैं। सुखदेव महाराज प्रसन्न होकर हर बार जहां पर परीक्षित महाराज के प्रश्न ने अगर कुछ नया मोड़ उत्पन्न किया हो, सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न है। वो कहते हैं कि आप महाराज कृष्ण कथा तो वैसे ही बड़ी उत्साहवर्धिनी है, लेकिन आपके प्रश्न से मुझे और उत्साह बढ़ रहा है। मंदाकिनी नामक नदी, कैलाश नाम का पर्वत, वहां पर कुबेर का निवास स्थान, वहीं पर मणिग्रीव नलकुबर बड़े हो गए, बड़े बाप के बेटे जैसे अभी हमने बताया। श्रीमद् भागवत इसमें स्पष्ट है कि एक बार आवश्यकता से अधिक धन अगर मिला और उस धन को ठीक तरह से व्यय करने की शिक्षा नहीं मिली, उपदेश नहीं मिला, तीन वस्तु केवल सामने आती है, तीन क्रियाएं, स्त्री का उपभोग, मदिरा का उपभोग और जुए का उपभोग, वाइन विमेन गैम्बलिंग, द्यूत स्त्रीय पान। यही तीन क्रियाओं में भौतिक धन का व्यय होता है। ये तीनों क्रिया में उसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को यह भावना होती है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बड़ा नियंत्रक हूं, ये मेरा पैसा है, ये मेरा धन है, मैं चाहे जो भी चाहे करूं। तो कुछ देवांगनाओं के साथ, कुछ देव स्त्रियों के साथ ये लोग उस मंदाकिनी गंगा में खड़े होकर विवस्त्र होकर क्रीड़ा कर रहे थे, पानी उछाल रहे थे, गीत गा रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं कि गंगा तो पवित्र करने वाली नदी है, तो उसमें वो साफ साफ कहते हैं, गंगा में भी केवल जाकर डुबकियां लगाने से मन और बुद्धि स्वच्छ और पवित्र नहीं होती। अगर पवित्र होने की इच्छा न हो, जैसे एक बार एक ब्रजवासी बता रहे थे अपनी कथा में, किसी ने कहा महाराज गंगा में उतरने से सारे पाप निकल जाते हैं, हमने सुना। बोला हाँ बिल्कुल, फिर क्या होता है? बोले जैसे भारत है ऊपर से गिर जाता है वापस। आपने गंगा में प्रवेश किया तो सब पाप ऊपर गए, और जैसे ही आप बाहर आ गए ऊपर सिर लग गए आपके सर के ऊपर। तो मन से स्वेच्छा से अगर कुछ स्वच्छ होने की पवित्र होने की इच्छा है तो ही गंगा का काम होता है। ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं है दुनिया में। हम सोचते हैं कि ऑटोमेटिक दरवाजा खुल गया, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण था। वो वजन का मशीन है, मैं खड़ा हो गया तो अचानक ऑटोमेटिक वजन का ये आ गया, नहीं, उसके पीछे मशीनरी है, उसने किसी ने बुद्धि लगाई है। क्या है ऑटोमेटिक जीवन में? तो भक्ति भी कैसे ऑटोमेटिक होगी? इच्छा, सबसे प्रथम इच्छा। तो देवर्षि नारद को देखकर वो युवतियों को बड़ी लज्जा हो गई, वो झट से बाहर आकर कपड़े पहन लिए। ये दो इतने मद्य पीने से मदोन्मत थे, इतने मत्त हो गए थे कि वह ऐसे ही देख के कहने लगे कि कैसे हैं, ठीक है सब कुछ। अभी नारद मुनि देख रहे हैं उनको, नारद मुनि तो देवर्षि हैं, सब जगह जा सकते हैं। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने कुछ देखा। वो कहते हैं कि भौतिक शरीर क्या होते हैं, इसके परिणाम तीन होते हैं, कीट या जीवाणु खाते हैं, मतलब कृमि, भस्म या विष्ठा। जिस किसी देह का अंतिम परिणाम ये तीन के अलावा और कुछ नहीं होता। पारसियों में जो कुआ होता है उनका, वहां पर वो प्रेत को रख देते हैं। फिर गिद्ध, चीले जैसे पंछी आके उसको खा लेते हैं, तो उससे भौतिक शरीर जो भी राजा का हो देवता का हो विष्ठा बन गया। कोई दफना लेते हैं तो उससे कीड़े खा गए उसको। हिंदुओं में दहन करते हैं तो भस्म हो गया शरीर। जब शरीर के ये तीन परिणाम निश्चित हैं तो क्यों इतना अभिमान, क्यों ये बड़े बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, बड़े पिता के रिस्पांसिबल पुत्र हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर कहते हैं कि शरीर है किसका? ये आपको पूछा जाए किसका है ये शरीर, आप कहेंगे कि मेरा है। आप जिस कंपनी में काम करते हो कहेंगे हमारा है, 9 बजे से 5 तक काम करो यहां पर, आप कहेंगे हाँ 9 से 5 उनका है। माता पिता कहेंगे हमने जन्म दिया है हमारा है। बच्चे कहेंगे हमको पालो आप, आपका शरीर हमारा है, हमारे काम के लिए आइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि वास्तविक कौन है इसका मालिक? मरने के बाद अगर कुत्ता खाएगा तो क्या उसका शरीर है ये? अग्नि बोलेगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर जिसका दहन होगा अग्नि का कहिए मेरे पास लाओ मैं उसको खत्म करता हूं। किसका है ये शरीर? फिर नारद मुनि सोचते हैं जिस किसी को कभी काटा चुभा है उसे पता चलता है कि काटा क्या होता है। जिसको कभी चुभा ही नहीं है वो कहेंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि ये जो तीन काम करते हैं, वाइन वुमेन गैम्बलिंग, स्त्री और सोना पान, इसके लिए सबसे इफेक्टिव प्रभावी एंटीडोट, प्रभावी औषधि क्या है? दारिद्र्य। दरिद्र, दरिद्रता आने के बाद लोग सोचते हैं कि अरे आपने, कई लोग जो हैं जो खुद धनहीन होते हैं अपार कष्ट करके बड़े सेठ बनते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं किसी के लिए प्याऊ खोलते हैं, किसी के लिए दवा देते हैं, किसी के लिए कपड़े देते हैं दान में, भले मैंने दारिद्र्य देखा है, दरिद्र दोषो गुणराशि नाशी, एक नीति शास्त्र की कहावत है। दरिद्रता का दोष है, बड़े 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 गुण हैं, गुण की राशि है, उसका नाश कर देता है। धन मान, धन का मद, धन का मान, प्रभुपाद इतने अच्छी तरह से वो तीन चार तात्पर्य में समझाते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है तो किसी का भी शरीर मेरे भोग के लिए होना चाहिए। जो मांसाहार इतना फैला हुआ है उसका कारण यही है। एक दृष्टि से देखा जाएगा तो आपका शरीर काटकर मैं मेरे शरीर को वृद्धि करना चाहता हूं, यह मांसाहार का मतलब है। लेकिन जो मांस, जो कहता है कि मांस दो मुझे, वेदम बताया गया है मांसह, मतलब आज मैं आपका देह खा रहा हूं, कल आप मेरा देह खा सकते हो, मैं अभी परमिशन दे रहा हूं। सोच लीजिए, जो किसी होटल में जाकर कुछ नॉनवेज ऑर्डर करेगा उसको पता चलेगा कि अगले जन्म में यही सब आपको खाएंगे, तो आज चलो कहते हैं किसने देखा है, ये सब भावनाएं, भावना कुछ नहीं है इसमें। आज जो हम देख रहे हैं कि जो कट रहे हैं उन्होंने पहले किया था ऐसे। एक बड़ा विद्वान लड़का कहता है तो जिसको मैं खा रहा हूं उसने पहले मुझे खाया होगा, इसलिए मैं खा रहा हूं ना उसको। समस्या किस बात की है? मैंने कहा समस्या यह है कि मनुष्य जीवन में आप इस दुष्ट चक्र को बंद कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब आपने किसी को मारा, फिर उसने आपको मारा, उसने मारा इसलिए आपने मारा, फिर आपने मारा उसने मारा, क्या जीवन इसमें चलता रहेगा? मनुष्य जीवन में ही हम कर्म की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मांस नहीं खाया तो मर जाएगा। लोग सोचते हैं ऐसे कि मर जाएंगे हम, अरे हमारा तो नॉनवेज के बिना चलता ही नहीं। एक व्यक्ति ने एक बड़ा प्रसिद्ध, खास करके वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका में कोई व्यक्ति नहीं जो स्लॉटर हाउस के पास में रहता हो। ये जो कत्तल खाने बहुत दूर दूर होते हैं। एक ने कहा है कि एक काम करो खाली, ये सारे कत्तल खानों को कांच की दीवारें लगा दो, फिर किससे पूछो के जाओ खाओ करके। लोग जब प्लेट में देखते हैं तो पता ही चलता कि इसके पीछे इतनी हिंसा थी। ये केवल अज्ञान है, और अज्ञान का कारण इसमें नारद मुनि समझाते हैं ये धन की मिथ्या प्रतिष्ठा। ये आसानी से मिला धन तो फिर व्यय करने में कोई उसमें हिचकिचाते नहीं वो। तो नारद मुनि ने क्या शाप दिया, नग्न हो, बिना लज्जा के ऐसे ही खड़े हो, ऐसे ही खड़े रहो। और वो नारद मुनि ने शाप दिया था इसलिए कोई किसी दूसरे जंगल में न जाके ब्रज धाम में नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष बन गए, ये उनका भाग्य था। यमलार्जुन, दो वृक्ष बड़े ऊंचे, एकदम आसमान छूने वाले जैसे, इतने सालों से सबने देखा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, किसी को पता नहीं है क्या वृक्ष हैं, क्या है करके। अब मैंने जैसे कहा कोई नहीं है, गोपाल जी धीरे 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 इन वृक्षों के तरफ ही जा रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती है कि इनको उद्धार करना ही है? मणिग्रीवा नलकुवर का कृष्ण के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। आज तक वैदिक इतिहास में हजारों लोगों ने, हजारों ऋषियों ने हजारों लोगों को शाप दिए हैं। जितना समय था शाप का उन्होंने शाप के परिणाम भोगे भी है। यहां पर नारद मुनि इन्वॉल्व्ड है, नारद मुनि का इसमें संबंध है। और नारद मुनि ने उनको क्या आशीर्वाद दिया है? शाप तो दिया था, आपका उद्धार स्वयं कृष्ण करेंगे। और कृष्ण की एक बात है। एक हिंदी में कवि कहते हैं, खुद का नाम टले टल जाए, भक्त का नाम न टलते देखा। अगर भगवान कहते हैं कि ये ऐसा होता है और भगवान के भक्त कुछ दूसरा कहते हैं, कई बार हम उदाहरण देखते हैं, जो रत्नाकर था डाकू, उसको नारद ने कहा राम राम जप करो, उस डाकू ने केवल लोगों को मारा था, तो वो मरा 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 ही बोलते मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, बोले ठीक है मरा जप करो। अब मरा नाम का कोई मंत्र नहीं है, लेकिन मरा 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 राम 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 आ गया उसमें। तो भक्त ने अगर कहा है कि ऐसे होगा, अब भगवान की जिम्मेदारी है कि ऐसा होना ही चाहिए, वो देखते हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में आकर, प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार कितना कठिन है, कैसे होगा? प्रभुपाद का लेटर है वो, प्रतिदिन नियमित रूप से कम 16 माला हरे कृष्ण का जप, 4 नियमों का पालन। प्रभुपाद ने कहा मैं गारंटी देता हूं कि आपका आत्म साक्षात्कार होगा। आज तक किसी ने गारंटी दी नहीं ऐसे, कोई शास्त्र में नहीं मिलता। कोई कहेगा अरे अरे ऐसा नहीं, और भी कुछ करना पड़ता है, कुल देवता की पूजा करनी पड़ती है और दान पुण्य करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है, तो करो। जिसको यह विश्वास है कि हरि अपना काम, अपना नाम भले टले जाए, अपने भक्त का कभी दिया हुआ वचन टलने नहीं देगा, तो ये प्रभुपाद के अनुचरों के लिए ये खास कंसेशन है। एक सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद इसके ऊपर लिखते हैं कि कृष्ण क्यों गए उनके पास, कोई बाध्य थे वो? ये तो वृक्ष योनि में अड़े हैं, ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अभी इतनी हवा आ रही है, इतने दिनों से पहले 2 महीने का ताप, फिर ऐसी हवा, फिर ये पानी। वृक्ष को किसी ने वृक्ष को देखा है सहानुभूति से, बेचारा कितना दिन से ऐसा है, उसको चिल्लाने के लिए भी कोई संधि नहीं है। 4 कारण प्रभुपाद बताते हैं उसमें, कारण मतलब 4 प्रमाण देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का पहला प्रमाण देते हैं, वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जाना मोरे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ए वैष्णव ठाकुर, मैं आपका कुत्ता हूं, मैं कोई भी जन्म ले सकता हूं, कीट जन्म हाउ यथा तुवा दास, मुझे कीड़ा बनना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका दास होना चाहिए। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश, कृष्ण बहिर्मुख अभक्त, कृष्ण कौन है कुछ पता नहीं, भक्त कौन है कुछ पता नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी का भी जन्म मिला तो मुझे वो स्वीकार नहीं है। वेदेशु दुर्लभम, श्री कृष्ण वास्तविक वेदों के लिए दुर्लभ है, अदुर्लभम आत्म भक्तो, तो वेद पढ़ने के लिए मत जाओ, उनका भक्त कौन है वो पहले देखो, उसके पीछे भागो। कई लोग सोचते हैं कि मैं पहले पढ़ लूं देख लूं फिर बाद में निर्णय करूंगा, तब तक 7 जन्म निकल जाएंगे, पढ़ने के लिए टाइम तो चाहिए होता ना। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यही धारण करेगा मन में कि पहले देखते हैं कृष्ण भक्त कौन है, उनके पीछे पढ़ो, उनकी सेवा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, झाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेचे केवा, कि अरे ओ आप कर्म ज्ञान योग तप दान सब कर रहे हो, वैष्णव सेवा किए बिना, नरोत्तम दास ठाकुर का यह सवाल ही है, प्रश्न है, वैष्णव सेवा किए बिना आज तक किसी को निस्तार प्राप्त हुआ है? नहीं। एक राधा गोविंद महाराज तुलसीदास का एक पद उद्धृत करते हैं कि शायद पानी मथने से घी मिल सकता है, वैसे नहीं मिलेगा लेकिन मिल सकता है, बिना पानी गिरे कृषक मतलब किसान खेती कर सकता है वो भी नहीं हो सकता, लेकिन शायद हो जाएगा कभी कि पानी गिरा नहीं बिल्कुल और खेती पूरी हो गई है, पानी को मथा है और घी निकल गया है। बोले ये शायद हो सकता है, लेकिन बिना वैष्णव की कृपा से हरि भक्ति नहीं मिल सकती, ये निश्चित है। ये शायद भले हो जाएगा किधर, ये भी दुर्लभ है, 1 in 10 million या 1 in 10,000 million, लेकिन एक वैष्णव की कृपा के बिना किसी को कृष्ण की भक्ति मिली है ये आज तक कभी हुआ नहीं है ना कभी होगा। तो नारद मुनि ने शाप दिया है, प्रेम के वश दिया है ना, गुस्सा से नहीं है। नारद मुनि को ऐसे विघ्न संतोषी या किसी को तकलीफ में डालने की इच्छा वाले नहीं है। तो इन दोनों को भी पता चला कि वास्तविक हमारे लिए वरदान ही था। तो धीरे धीरे उस समय कुछ बच्चे देख रहे थे कि ये गोपाल अभी आंगन में था, ये उधर क्यों जा रहा है। तो धीरे 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 अपने स्पीड से वो उखल को घसीटते 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 जा रहे हैं। दोनों भाई थे तो ये दोनों पेड़ भी एक दूसरे से एकदम सटीक ऐसे लगे हुए थे, बीच में इतनी ही जगह थी कि गोपाल जा सकता है। और जैसे ही वो गया आगे के उखल आड़ा हो गया, जो पहले खड़ा था ऐसे हो गया, उखल अटक गया। अभी गोपाल सब देख रहे, छोटे से बच्चे थे उधर, कुछ क्या कर रहा है ये। उन्होंने थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा जोर लगाया, खट 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 करके बड़ा शब्द हो गया, दोनों बड़े पेड़ वहां पर धड़ाम करके गिर गए। और बाकी लोगों ने इतना सुना नहीं सुना, लेकिन उस समय में ये दो देदीप्यमान देहधारी देवता वहां से आ गए। भगवान के उखल के स्पर्श से सारे उनके पाप, सारा उनका मन, सब कुछ एकदम स्वच्छ निर्मल हो गया था। उन्होंने कहा, आज हम समझ गए कि आप तो महान है ही, आपके भक्त कितने महान हैं। हमें लज्जा हो रही है कि हमने क्या किया था, हमको ऐसे शरीर मिला, हमने ऐसा कार्य किया, उचित हो गया कि हमको ये शरीर मिला वृक्ष योनि में, और हम क्षमा चाहते हैं। एक प्रूफ, एक प्रमाण कि कृष्ण के स्पर्श से कैसे व्यक्ति को उत्तम ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति करने लगे वो, आप त्रिगुणों के परे हैं, माया आपकी दासी है, ये संसार ये केवल लीला है आपकी, आप यहां पे आते हैं अपनी इच्छा से, आप जाते हैं अपनी इच्छा से। और संतुष्ट होकर उन्होंने भगवान से आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा, ठीक है आप अपने स्थान चले जाओ। तो पेड़ वहां पे गिरे हैं, दोनों अंतर्धान हो गए। फिर उसके बाद नंदा यशोदा मैया बाकी सब आ गए, क्या हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। तो बच्चों ने कहा कि ये क्या हो गया हम बताते, ये ऐसे गया फिर ये उखल अटक गया और दोनों पेड़ गिर गए, और हमेशा की तरह तरह हमेशा की तरह सब बोलने लगे, ये क्या बच्चे पागलपन जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सही है कि ये बालक जहां कहीं भी है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है, कुछ ना कुछ बड़ी हलचल मचती है, कुछ ना कुछ छोटे उत्पात होते हैं। अब मैया का पूरा क्रोध चला गया, उन्होंने स्वयं उसको खोल दिया उखल के बंधन से, प्रेम से गला लगा दिया। और इस तरह से ये जो सुंदर उखल बंधन का प्रसंग है, उसके आगे सुखदेव गोस्वामी बाकी उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। और हम भी हमारे अंतिम चरण में आए हैं, अभी जो लास्ट 15 मिनट हैं उसमें गौचारण, जो कि भगवान का नाम है गोपाल। क्यों? जैसे कोई प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो किसी व्यक्ति ने पूछा, भगवान कौन है? तो उन्होंने कहा कृष्ण। क्या करते हैं वो? बोले गोचारण। अब सोच लीजिए, अमेरिका में भगवान अगर गाय पालते हैं तो बोले और कोई काम नहीं उनके लिए? ये कोई कहेंगे ये पढ़ते हैं, या जैसे कोई सेठ जी हो क्या करते हैं? बोले पैसा गिनते हैं। बोला सही बात है, इतना पैसा इसलिए गिन रहे हैं। कोई साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं? वो बोले यहां से वहां कुछ डालते हैं, कलर चेंज होता है कि देखते हैं, हिला के देखते हैं, लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं, किसी को खाना अच्छा लगता है तो खाते हैं। तो ये सब अलग अलग व्यक्तियों के अपने अपने, कोई प्लेयर है वायलिन प्ले करता है, वायलिन बजाता है, कोई पियानो बजाता है, कोई मृदंग बजाता है। क्यों करते हैं ये सब? सचिन तेंदुलकर पूछा गया कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? बोले मजा आता है, पैसा आता है वो बात अलग है, मैं तब तक खेलता रहूंगा जब तक मुझे मजा आएगा। एक त्रिगुणात्मक देहधारी जीव, वो अगर जिसमें उसको आनंद आया वो काम करता है, तो त्रिगुण के परे सब चीजों के स्वामी, वो अगर उनको जिसमें आनंद आए वो काम करेंगे, तो आपका कुछ गया उसमें? नहीं ना, नहीं। तो गाय उनको प्रिय है, वो गाय को प्रिय है, वृंदावन भूमि उनको प्रिय है। तो वास्तविक सब कुछ एक ही श्लोक, एक ही वाक्य में आता है, आनंदमयोभ्यासात। ये वेदांत सूत्र का वाक्य है कि आप भी अपने जीवन में कभी झांकी झांक के देखिए कि मैं सुबह से शाम तक जो भी काम करता हूं या करती हूं, उसके पीछे दो ही मेरे उद्देश्य हैं, मेरा आनंद बढ़ना चाहिए, दुख कम होना चाहिए। कभी जानबूझ के दुख बढ़ाने के लिए काम किया है? हाय अफसोस, हमारा जीवन ऐसा है कि आनंद तो बढ़ता नहीं और दुख तो कम होता नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया है दुखालयम अशाश्वतम। जीव को यहां भेजा है दुख के लिए। हम कहेंगे अरे आज पता चला, इतने चारों तरफ दुख से घिरे हैं तो भी हम दुख आने पर आश्चर्य व्यक्त करते, अरे ऐसे कैसे हो गया? अभी हिमालय, हिम का आलय, वहां पे बर्फ देकर कोई आश्चर्य व्यक्त करता है कि इतना बर्फ कैसा इधर? पर नाम ही हिमालय है भाई। औषधालय, तो वहां पे सब दवाई होगी। रुग्णालय, भक्ति वेदांत रुग्णालय है ये, चार फ्लोर पर सब जगह बीमार लोग पड़े हैं। अब कहेंगे ये लोग कभी गाते क्यों नहीं, डांस क्यों नहीं करते? बोले सब बीमार है लोग, रुग्णालय रुग्ण लोगों से भरे हुए हैं। तो उसी तरह से दुखालय तो दुख से ही भरा होगा ना। हाँ, फिर क्यों बनाया दुखालय? बोले उसके लिए पीछे कारण है, भगवान के साथ पौष्टिक नरिशिंग और सही संबंध स्थापन नहीं करेंगे तो जैसे प्रभुपाद कहते कि जैसे उंगली है, छोटी उंगली है, मेरे शरीर का हिस्सा है, कुछ काम की वजह से वो बेंड नहीं हो रही है, वो काम नहीं कर रही है ठीक से, तो उसको भी तकलीफ मुझे भी तकलीफ। कभी आपकी उंगली अगर दर्द कर रही है, किसी ने शेक हैंड किया तो आप धीरे 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 धीरे, बोले क्या हो गया? नहीं वो मूर्ति नहीं, वो बहुत दर्द हो रहा है। मतलब उंगली के लिए भी तकलीफ, आपके लिए भी तकलीफ। क्यों? क्योंकि उंगली उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसकी संविधानात्मक स्थिति में नहीं है। उसकी मूल स्थिति है कोऑपरेट करना। मैं कहूंगा मुड़ो तो मुड़नी चाहिए, इसको उठाओ यहां रख दो, रखना चाहिए। हाथ अपना अगर उठ हिलेगा नहीं तो हाथ क्या काम का? कभी कभी युद्ध में किसी का हाथ कट जाता है तो कटे हुए हाथ को वो भी कहता है कि चलो बंदूक उठाओ, नहीं उठाएगा वो, क्योंकि दिखने में हाथ है लेकिन काम नहीं करेगा। ईशोपनिषद में प्रभुपाद समझाते हैं हम सब जीव भगवान के अंश हैं, जैसे शरीर का अंश हाथ है, लेकिन हम उनसे मन से भावना से अलग हो गए हैं, इसलिए हमारे मन में प्रश्न उपस्थित है क्यों? मैं कृष्ण को अपना मन क्यों दूं? मैं अपनी संपत्ति क्यों दूं? मैं अपना जीवन क्यों दूं? ये मेरी संपत्ति है, मेरे आनंद के लिए है, तो ले लो अपना आनंद। नहीं, ये तो दुनिया तो दुखालय बताई गई है। प्रभुपाद कहते जैसे हाथ ने कहा ये लड्डू मैंने कमाया है, मेहनत मैंने की है, लड्डू मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ना मुंह को दूंगा ना पेट को दूंगा। चार घंटे के बाद हाथ भी चिपचिपा हो गया है, वो लड्डू भी खराब हो गया है, ना हाथ को आनंद ना पेट को आनंद। पेट में लड्डू डालने से क्या होता है उसका? पेट कहते कि मैं खाता हूं अपने लिए, मैं ये शक्ति आपको ही तो देता हूं ना। तो कृष्ण जब कहते हैं कि सब आपका प्रेम मुझे दो, ये सबसे अच्छी चीज मुझे दो, तो सबसे पहले हमारे मन में होता है ये इतनी जबरदस्ती क्यों करता है ये। अरे जब आप उसको देते हो तो आपको ही मिलता है, क्योंकि आप उसके अंश हो। और यही बात सुंदर ढंग से कि सारी प्रकृति कैसे भगवान के साथ सहयोग करती है, ये हम एक अंतिम 10 मिनट में ये गोचारण लीला में देखेंगे। अब गोपाल बड़े हो गए हैं, इतने बड़े नहीं कि वो गायों को ले जाएं। गोपाष्टमी जो त्योहार मनाते हैं उसमें प्रथम बार उनको गाय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वृंदावन की सिस्टम, वृंदावन की प्रणाली ऐसे है कि छोटे बच्चों को छोटे बछड़े दिए जाएं, बड़े होने के बाद गाय दिए जाएं। कितने गोप बालक और कितनी गाय थी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनंत कोटि, कोई उसकी संख्या ये नहीं लगा सकते। प्रतिदिन यशोदा मैया गोपाल का श्रृंगार करेगी, कुछ बच्चे रात को सोते समय यही सपने में उनके भावना है कि कल गोपाल का श्रृंगार कैसे होगा, कल सुबह हम ये जाएंगे तो यहां खेलेंगे, मैं ये क्रीड़ा करूंगा, मैं उनके लिए ये बनाऊंगा। अपनी मां से कहते थे कि ये बनाओ गोपाल को देना है, पूरा गोपाल 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 करके सो गए। और सुबह ही जल्दी उठे, मां को कहा जल्दी जल्दी मुझे नहलाओ, जाना है मुझे। उसमें से तीन चार तो पहले से ही आ गए, दरवाजे से देख रहे हैं से क्या हो रहा है। गोपाल जी भी उठ गए थे, स्नान वान हो गया था, लेकिन यशोदा मई का हृदय छोड़ने के लिए नहीं जा रहा है। वो कह रहे कि एक और गहना पहनाती हूं, फिर इस तरह से पगड़ी बांधती हूं, फिर इस तरह से ये वो अलग अलग प्रकार के आभूषण अलंकार। फिर उसमें से देखती है कि तीन चार बालक पहले से ही आ गए हैं, बोले आ जाओ आ जाओ, आप ये पहनाओ आप ये पहनाओ। और उसमें से ही गोपाल किसी के साथ किसी की चोटी खींच रहे हैं, किसी के साथ कुछ को पिंच कर रहे हैं या कर रहे हैं, बोल के हे मस्ती मत करो। फिर सब हंस रहे हैं, मां का हृदय अभी तक तैयार नहीं है कि इसको जाने के लिए विदा करने के लिए वो तैयार हो जाए। उधर से बाकी सारे अपने बछड़ों को लेके आ रहे हैं, और फिर गोपाल कहते हैं कि अब जाऊं, हां एक मिनट, फिर उसको रोक दिया। फिर दहलीज तक आ गई, आंगन तक आ गई, और दूर आ गई, फिर कहते कि मैया मैं जाता हूं अभी, चलो ठीक है। फिर जैसे ही ये सब लोग जा रहे हैं धूल उठ रही है, क्योंकि बछड़े जाते हैं तो बच्चे जाते हैं तो धूल उठती है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, इतनी सारी धूल है। जब सारी धूल ऐसे 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 बैठ गई तब तक मैया ताकती रहती है। गोपियां भी देख के सोचती है कि बाप रे अभी और कम से कम 6-7 प्रहर का वियोग, और बालक सारे सुखी है कि ये रात का जो वियोग था अब ठीक हो गया। फिर फल प्रबाल स्तवक सुमन पिच्छ धातु भी काच गुंज मणि स्वर्ण भूषिता अप्य आभूषयन, जो भी सिंगार मां ने किया था वात्सल्य रस में, ये गोपियों गोप बालकों के सख्य रस में कहते कि ये ठीक नहीं है, ये कितने सोना चांदी सब लगा दिया है। फिर वो अपना मेकअप चालू करते हैं उधर, ओ गुंजमाला कुछ मणि, ब्रजधाम में इतनी मट्टी है अलग अलग रंग की, फिर उससे वो फिर चालू उधर, और भगवान गोपाल आराम से प्रेम से सबका ये आनंद लेते हुए जितना मर्जी करो। अभी हमारे अपने डिटेल में हम देखते हैं, मेरे साथ तो कभी ऐसे हुआ नहीं अभी तक, लेकिन कई भक्तों में देखता हूं उनको श्रृंगार करने समय वहां से उतरने का मन ही नहीं करता। एक बार मैं मेरी आरती थी और इंचार्ज थे उधर, मैं नाम नहीं लूंगा, और एक पुजारी थे, वो कहे कि एक फूल और लगा लेता हूं। तो मैंने एक फूल लगा दिया, फिर कह लगे एक मणि लगाता हूं इधर। तो कहे नहीं प्लीज एक। मैंने कहा ये क्या इनकी भावना है, मैं तो सोचा जाके आरती करो अपना सब करो शंख बजाओ आ गया, लेकिन नहीं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं इच्छा होती है, और भगवान का एक मुख्य गुण क्या है, अलंकार लगाने से अलंकार भूषित हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये सोने का गहना पहनकर आप सुंदर नहीं दिख रही हो, अलंकार बड़ा सुंदर दिख रहा है। सोच लीजिए जब लोग एक दूसरे की स्तुति करते हैं ना कि ये शर्ट बड़ा अच्छा दिखता है तुम्हारे ऊपर, मतलब वो कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, खाली ये शर्ट सुंदर पहन लिया है मैंने। हम कहें कि सुंदर, हमने देखा कृमि भस्म अविष्ठा यही शरीर का हाल है। तो कृष्ण के प्रति भूषण मांगम, अलंकार पहनाने से अलंकार की शोभा बढ़ती है। आगे मुष्णन तो अन्योन शिक्या दिन ज्ञातान आराच चिक्षिपु तत्रत्यश्च पुनर्दुरा दशंतश्च पुनर्दधु। अब ये गोप बालकों का सख्य भाव है, आपस में सब प्रेम से रहते हैं। कोई एक जा रहा है, उसने अपने पीठ के ऊपर या इधर बांधी हुई जो भी उसकी उसकी गोपी माँ ने जो भी बनाया हुआ है, तो अचानक उसका हाथ जाता है, अरे कहाँ गया, फिर दूर कोई बालक दिखाता है, चुरा लिया ना मैंने, फिर वो उसके पीछे भागेगा, अब और किसको फेंकेगा, और किसको देगा। आपस में ऐसे सब खेल खेल में और पूरा आनंद लेते हुए, वहां कोई असूया, वहां कोई स्पर्धा बुद्धि, वहां कोई द्वेष नाम के लिए भी नहीं है। यदि दूरम गतो कृष्णो वन शोभे क्षणायतम, किसी ने देखा कि अरे गोपाल एकदम आगे गए हैं, तो वो जाके दौड़ेगा और दौड़ते समय क्या कहेगा, अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मेरे, देखो मैं कैसे भगवान को छू देता हूं। बच्चों में ऐसा होता है, अगर एक कोई दौड़ रहा है और कह रहा है कि देखो मैं कैसे दौड़ता हूं, दूसरा तुरंत उठता है मैं आपसे तेजी से दौड़ता हूं, और ये सब इतनी तेजी से दौड़ते 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 कृष्ण के पास आएंगे, गोपाल को छुएंगे। और जैसे ही कृष्ण को छूना, हमने देखा कि बड़े बड़े महर्षि हैं, किसी को ये सुख लाभ नहीं मिलता, उनके स्पर्श से अपार आनंद, कृष्ण को भी आनंद, जिसने उनको छुआ उनको भी आनंद। अब ये लास्ट है गोचारण लीला का वर्णन, क्या क्या किया इन्होंने, केचिद वेणुन वादयंतो भ्रांत श्रृंगानि केचन केचिद भृंगय प्रगायंत कुजंत कोकिलय परे। हरेक झुंड में जो भी बालक थे, हरेक का अपना अपना कुछ काम है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई श्रृंग बजा रहा है, कोई भ्रमर की आवाज निकाल रहा है, कोई कोयल की आवाज निकाल रहा है, कोई बालक देख रहा है कि ऊपर से पंछी उड़ रहे हैं और ये नीचे भूमि पर होकर उनकी नकल करके उनको उनके साथ स्पर्धा कर रहा है, कोई हंस को देखकर उनकी चाल की नकल कर रहा है, किसी ने देखा कि बंदर बैठे हैं, तो एक बालक ने बंदर को ई करके ऐसे अपने दांत दिखाए तो बंदर भी उसको दांत दिखा रहा है, ये भी बंदर को दांत दिखा रहे हैं। कोई जगह गए जहां पर मेंढक थे और मेंढक ऐसा है जैसे देखता है कोई हलचल हो रही है तो तुरंत टपक करके पानी में जाता है, वो उसको देखे ये बालक भी पानी में कूद मरे। आप कहेंगे ये हमने भी ऐसे किया था बचपन में, एक बार मैं ऐसे बारिश में था तो बाद में 3 दिन बुखार हो गया था मुझे। तो हमारी अपनी ये सब लीलाएं हैं, ये तो लीला होती ही नहीं। हमने पहले 20 मिनट इसी के ऊपर चर्चा की कि भौतिक देह प्राप्त करने के बाद लीला नाम का, लीला का नाम ही भूल जाओ, ये केवल पीड़ा। मायावादियों में और भक्तों में यही अंतर है। लोग समझते हैं ये भगवान की लीला है, फिर मेरी भी लीला है। क्या लीला है आपकी? ये भौतिक शरीर लीला है, हां मैं मरूंगा अपनी लीला से। कई बार ऐसे भोंदू गुरु मर जाते हैं और शिष्य समझते हैं गुरु ध्यान में बैठे हैं। ये प्रभुपाद के समय हुआ था और पिछले साल हो गया वापस, कि एयरपोर्ट पे वो गुरु का शव पड़ा है और शिष्य कह रहे हैं कि उनको छोड़ो नहीं, उनका टिकट निकाला है हमने, वो जा रहे हैं किधर। तो लोग बोल रहे हैं क्या बात है, अरे दुर्गंधी आ रही है उससे, क्या ध्यान, किस प्रकार का ध्यान हो रहा है ये। तो गवर्नमेंट को ऑर्डर निकालकर बोलना पड़ा कि ये ध्यान नहीं है, ये मर गए हैं। फिर पता चला कि वो अगर मरते हैं तो उनका नुकसान हो रहा था, अगर गुरु ध्यान में बैठे हैं तो उधर ही उनकी समाधि मंदिर बना दो और उधर चंदा चालू। तो सब ये धन कमाने के मार्ग हैं। गुरु भी वैसे ही थे तो शिष्य ऐसे निकलेंगे। लेकिन ये जो कृष्ण के साथ जो सब जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृत पुण्य पुंजा, अमाप पुण्य की राशि। वास्तविक ये पुण्य, ये दान और ज्ञान वाला पुण्य नहीं है, ये भक्ति का पुण्य है। ये उन्होंने किया इसीलिए उनको ये सब आनंद मिला। ये सब करते करते कंस, कल देखा हमने कि पुतना को भेजा उसने, फिर उसके बाद तृणावर्त को भेजा, शकटासुर गया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं सुबह से, सुबह क्या रात भर ये लोग भक्त गोप बालक सब इसी इसमें थे कि कल सुबह होगी तो हम गोपाल के साथ जाएंगे। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि फ्रॉम द वर्ड गो, पहले क्षण से अपार आनंद, अपार आनंद, अपार आनंद, इतना आनंद कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। इसमें भूख भी भूल गए। तो ये लीला शक्ति के, भगवान की लीला शक्ति एक शक्ति है, उसकी योजना से बराबर दोपहर के समय कोई असुर आता था विघ्न डालने के लिए। असुर के एंट्री के बाद, प्रवेश के बाद सब कुछ बदल गया। हरे रे, कोई असुर कृष्ण को निगल गया, कोई कृष्ण को लेके गया, कुछ क्या हो गया। तो उससे उनकी भूख बढ़ती थी और फिर जब असुर को मार दिया तब सब देवता उधर भगवान की जय, भगवान की जय, और ये बच्चे लोग फिर खाने के लिए उनको फिर समय मिलता था। तो इस समय कुछ ही दूरी पर भक्तों ने, बालकों ने देखा इतना बड़ा मुंह करके कोई खड़ा है। देखने का ये क्या है? रास्ता बाहर आ गया है। बोले नहीं, ये उसकी जीवा लग रही है। बोले नहीं नहीं, ये तो रास्ता है। और आगे गए, और आगे गए, किसी ने उसके दांत देखो कितने बड़े हैं। अरे ये दुर्गंधी आ रही है, उसने जो पहले मांस वांस सब खाया है, इतने शव खाए पशुओं के, उसकी दुर्गंधी आ रही है। ये उष्म हवा आ रही है, ये उसकी आंखें लगता है। ये कोई कह रहा है कि ये सांप तो नहीं होगा? बोला नहीं, लगता तो नहीं है। बोला हाँ हो भी गा। और कृष्ण वहां पे देख रहे हैं, उनके मन में आया कि इनको रोकें। अरे अरे अरे, बोलने से पहले ही सारे बालक अघासुर जो आया था सांप के रूप में उसके मुख में चले गए। पहली बार कृष्ण स्वयं अपनी ही लीला शक्ति पर आश्चर्य व्यक्त करने लगे कि अभी क्या होगा। कोई बोलेगा आप ही तो बताओ क्या होगा, सब कुछ चलाने वाले आप ही हैं। बोले ये मुझे नहीं पता चला कि ऐसे होने वाला था आज करके। अघासुर था, पुतना और बक, बकासुर जो बाद में आएगा उनका भाई, उसके मन में इच्छा क्या थी, मैं सारे बालकों को पहले मार देता हूं फिर कृष्ण को मारूंगा, जब ये सब मर जाएंगे तो उनके माता पिता जो ब्रजधाम के लोग हैं अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि बच्चे के बाद तो माता पिता तो जीवित नहीं रह सकते। अब सोचिए कि इतना इतना उसका पापी था मन, इसलिए नाम ही उसका अघासुर रखा। देवता उसको देख के एक्स्ट्रा पीते थे अमृत रोज, वो रोज अमृत पी रहे हैं ताकि अमर रहे, और अघासुर को देखकर उनको गारंटी नहीं कि हम अमर रह सकते हैं, इतना डर। और इस अघासुर को वहां पर कंस ने भेजा, उसने कहा कि ये कृष्ण को मारकर मेरे मेरी बहन को जो उसने मारा है उसकी स्मृति में मैं तर्पण करूंगा, मैं तिलांजलि दूंगा, जो भी हम किसी मृत व्यक्ति की बात करते हैं वो मैं कृष्ण को मार के करूंगा। तो ये कृष्ण को मारने की इच्छा भले कलम से कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, या वास्तविक असुर देह धारण करके, दोनों एक ही है। कृष्ण ने सोचा क्या करें, फिर उन्होंने कहा नहीं जा ही लेते अंदर। जो ऋषि मुनि हम कहते ना कि देखते रहते हैं, पराक्रम मतलब इतना परिश्रम, इतना ध्यान, इतना वेदों का ज्ञान जबरदस्ती पाके, सालों साल अध्ययन करके जोर जबरदस्ती से परमात्मा का चरण हृदय में धारण करना पड़ता है। मन इतना चंचल है ऐसे हो गया, भाग गया इधर इधर भाग गया। आप लोग जो जप करते हैं पता चलेगा मन कैसे भागता है। तो ऐसे महत परिश्रम से जिनके चरण हृदय में धारण करने के बाद भी नहीं मिलता, वो उनके चरण अपने आप इसके मुख में जा रहे हैं, ये कैसे? तो यही है भगवान की कृपा। और सारे जब बालक अंदर आ गए, कृष्ण भी जब अंदर आ गए, उसने मुंह बंद कर दिया। उसके अंदर के जो वातावरण और विष जो था उससे बालक तो सब मर गए, कृष्ण कैसे मर सकते हैं? वास्तविक कृष्ण ने अंदर जाके अपना शरीर विस्तार करना आरंभ किया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अघासुर की आंखें घूमने लगी और उसके सर के यहां पर बड़ा छिद्र होके सब देवता देख रहे हैं। अत्यंत तेज पुंज ऐसा एक अग्नि लोल, एक ज्योति बाहर आ गई, कृष्ण बाहर आ गए। एक कटाक्ष से उन्होंने गोप बालक और गौएं सबको पुनर्जीवित कर दिया और सब देवता आश्चर्य के देख रहे हैं क्या हो रहा है ये। और जो अघासुर का अघासुर की अंतर ज्योति जो आत्मा हो तो शुद्ध है, वो वहां पे श्री कृष्ण के देह में विलीन हो गई। इतना पाप करने पर भी उनको ये सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी भगवान ने। सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए, पुष्पवृष्टि करने लगे, सब बालक एक दूसरे को देखने लगे क्या हुआ था क्या हुआ था, कोई इन्हें पता नहीं, मुझे भी कोई याद नहीं है, उनको स्मृति ही नहीं। सब श्री कृष्ण को केंद्र में रख के आराम से अपना भोजन करने लगे। अघासुर कौन था, वो क्या हो गया उसका, तो उधर वो कलेवर ऐसे ही सूखने लगा। जाते जाते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, महाराज ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा असुर मर गया, एक साल तक ब्रजधाम में इसकी चर्चा भी नहीं हुई। और परीक्षित महाराज जैसे हमने कहा चाणाक्ष श्रोता, एकदम तीक्ष्ण ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक वर्ष तक अघासुर के वध की चर्चा नहीं हुई, तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी दूसरी कथा करने लगे, दूसरे चरण तक जा रहे थे, उन्होंने कहा महाराज एक मिनट, अघासुर का वध एक वर्ष तक क्यों उसकी चर्चा नहीं हुई? आपको भी अगर ये सुनना है तो आपको भागवत पढ़ना पड़ेगा। तो आप जैसा श्रोता मिलना बड़ा भाग्य का विषय है। मैं आप सबके चरणों में दंडवत करता हूं। श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, ताई गौर प्रेमानंदे।